यह इस लंच बॉक्स में है। उसने जल्दी से लंच बॉक्स का ढक्कन बंद किया और लंच बॉक्स वापस रख दिया। जब जिया जी ने उसे देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये जू झेंगान वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति है। मैं मुफ्त में खा पी रहा था, लेकिन जू झेंगान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वह हमेशा मेरी बात मान लेता था। जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से मिलेंगे तो आप उसे कभी दुखी नहीं करेंगे। जिया जी ने लंच बॉक्स खोला, चॉपस्टिक से एक उबला हुआ अंडा उठाया और उसे जू झेंगान के लंच बॉक्स में डाल दिया। दो तले हुए अंडे आप दोनों के लिए एकदम सही हैं। यह आपका नाश्ता है और मुझे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बुरा लग रहा है। तुम्हें ज्यादा खाने की जरूरत है। देखो तुम कितने दुबले हो गए हो। मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं बस उतना ही खाता हूँ जितना मेरा जीवन आसान हो। मेरी चिंता मत करो। जू झेंगान ने फिर से तला हुआ अंडा उठाया। जिया जी ने जब ये देखा तो उसकी भौहें तन गईं। जू झेंगान, तुम दूसरों के लिए बोझ हो। मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ और मित्रों को जानबूझकर दूसरों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मुझे तुम्हारा खाना खाना उचित नहीं लगता। मैं तुम्हारा खाना खाने की वजह से तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। क्या तुम अब भी मुझे अपना दोस्त मानते हो? जब जू झेंगान ने देखा कि जिया जी गुस्से में है तो वह जल्दी से मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करता हूँ, भले ही तुम एक लड़की हो। दोस्त होने के बावजूद पुरुषों को महिलाओं के आगे थोड़ा झुकना पड़ता है। ओह, दोस्तों को भी महिलाओं के आगे थोड़ा झुकना पड़ता है। हमारे कॉमरेड जो महिलाओं के प्रति सचमुच दयालु हैं। अचानक गाड़ी के गलियारे के पीछे से चार या पांच सिर बाहर निकले जो मुस्कुराते हुए उन दो लोगों को देख रहे थे। जिया जी ने उन पांच सिरों को देखा जो उभर आए थे और वह दंग रह गया। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि यह जू झेंगान का दोस्त होना चाहिए। वह विनम्रता से खड़ा हुआ, लंच बॉक्स अभी भी हाथ में था और मुस्कुराते हुए बोला, तुम जू झेंगान के दोस्त हो, है ना? मैं जू झेंगान का दोस्त हूँ, मेरा नाम जिया जी है। पांचों लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, विशेष रूप से जियांग यिफान, जिसने जू झेंगान से इतनी सक्षमता की उम्मीद नहीं की थी। मैं जिस लड़की को जानता हूँ वह बहुत ही सुंदर और शिष्ट है। हालांकि उसके कपड़े थोड़े बेढंगे लगते हैं, लेकिन उसका व्यवहार और व्यवहार बिल्कुल सही है। पांचों लोग दोबारा फोन करने में शर्मिंदा थे, इसलिए वे जल्दी से आगे बढ़े और औपचारिक रूप से जिया जी से अपना परिचय दिया। कॉमरेड जियाओ जिया, यहाँ बैठना बहुत असहज है। चलो अपनी गाड़ी में चलते हैं। हमारी स्लीपर गाड़ी ज्यादा सुविधाजनक है और हम वहाँ बातें कर सकते हैं। वैसे वहाँ खाना ज्यादा सुविधाजनक है। जियांग यिफान ने झट से जू झेंगान को आंख मारी। चूंकि जियाओ जो को वो लड़की पसंद थी तो उसने थोड़ा और ध्यान रखने की कोशिश क्यों नहीं की। लड़की के कपड़ों को देखकर ही पता चल गया कि वह उन शिक्षित युवाओं में से एक है जिन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण का समर्थन किया था, और ये परिवार के अनुकूल होना चाहिए। लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी और जू झेंगान के पास लड़की को स्लीपर कार में बदलने की शर्तें थीं। हम लड़की को बाकी सभी के साथ इस बड़ी सख्त सीट पर कैसे बैठने दे सकते हैं? जल्दी से कहा, बूढ़े जू, जाओ कंडक्टर को ढूंढो और कॉमरेड शियाओ जिया के लिए बर्थ ढूंढो। बेशक, जब उसने ये कहा तो उसने जानबूझकर जिया जी की अभिव्यक्ति को देखा। नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत करो, इससे मुझ पर बोझ ही बढ़ेगा। जू झेंगान और मैं दोस्त हैं, लेकिन मैं उसका इतना फायदा नहीं उठा सकता। दोस्ती पारस्परिक होती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों का फायदा उठाता है तो वह दोस्त नहीं है। जू झेंगान ने रास्ते में मेरी अच्छी देखभाल की और मेरे लिए सारा भोजन भी तैयार किया। क्या होगा यदि मैं और आगे बढ़ जाऊं और जू झेंगान से स्लीपर बर्थ खरीदने के लिए कहूं? मित्र होने के नाते हमें व्यवहार कुशल होना चाहिए। जियांग यिफान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और निश्चित रूप से उसने जो कहा उसमें कुछ बुरी मंशा थी। बेशक वह जू झेंगान को जियाजी की परीक्षा लेने में मदद करना चाहता था। आखिरकार आजकल गरीब परिवारों की लड़कियां बहुत चालाक होती हैं और खासकर दूसरों का फायदा उठाना पसंद करती हैं। वे ऐसी स्त्री से विवाह करने का साहस नहीं करते जो अपनी संपत्ति के लिए पुरुषों से पैसे वसूलने को आतुर हो। जू झेंगान कौन है? उसे अभी तक इसका एहसास नहीं था, लेकिन वह ईमानदार और सीधा था और दूसरों के साथ छल करना पसंद नहीं करता था। वह सीधा सादा था। अगर आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप एकनिष्ठ रहेंगे। अगर आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो आप एक स्पष्ट रेखा खींचेंगे और कभी भी ऐसा अस्पष्ट व्यवहार नहीं करेंगे जिससे सही और गलत के बारे में कोई स्पष्टता न हो। इस लड़के का व्यक्तित्व ऐसा है कि उसे आसानी से हार का सामना करना पड़ता है और वह उन लड़कियों को नहीं जीत सकता जो बहुत जटिल हैं। जब उन्होंने ये कहा तो उनका विचार एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारने का था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे सामने खड़ी लड़की इतनी सुंदर और सीधी सादी होगी, और उसने मुझे लगभग अवाक कर दिया। लड़की ने तो साफ साफ कह दिया है। अगर मैं कुछ और कहूंगा तो लगेगा कि मैं किसी संकीर्ण सोच वाला आदमी हूं। क्या तुम और झेंगान दोस्त नहीं हो? दोस्तों का एक दूसरे की मदद करना ठीक है। ये सुनकर जुहू जेंगान की आंखें थोड़ी उदास हो गईं। वह जरूर अपने बचपन के दोस्त को जानता होगा। जियांग यिफान के पास हजारों चालें छिपी हैं। ये वही चाल है जो उसने जिया जी से निपटने के लिए अन्य लड़कियों पर इस्तेमाल की थी। जुहू जेंगान थोड़ा नाखुश था। ठीक है, ये व्यंग्यात्मक शब्द कहना बंद करो। जिया जी वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। अगर तुम फिर से हमारे साथ कोई चाल चलने की कोशिश करोगी तो मुझे तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार करने का दोष मत देना। हम इतने सालों से दोस्त हैं और यह रिश्ता टूटने वाला है। मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे दोष मत देना। जब जियांग यिफान ने यह सुना तो उसने दया की भीख मांगी। कॉमरेड जियाओ जिया, मैं गलत था, मुझे माफ करना, मैं सचमुच गलत हूँ। जल्दी करो और मुझसे कुछ अच्छा बोलो, वरना सुना तुमने, ये बचपन का दोस्त खूबसूरती के लिए अपने दोस्तों को भूल जाएगा और सीधे मुझसे ब्रेकअप करना चाहेगा। ये सुनकर जिया जी जोर जोर से हंसने लगी। कॉमरेड जियांग, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आप दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपको अपना काम खुद ही संभालना चाहिए। लेकिन जिया जी ने स्लीपर कार में जाने के उनके गर्मजोशी भरे निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया। बेशक वह सिर्फ खाना खाने जा रही थी। भोजन के बाद सभी लोग एक दूसरे से परिचित हो गए। ये युवा और खूबसूरत लड़की न सिर्फ खुलकर बोलती है बल्कि बहुत समझदार भी है। सबसे खास बात यह है कि उसकी नज़र तेज है और उसका स्तर ऊंचा है। वे जिस विषय पर बात कर रहे थे, ऐसा कोई विषय नहीं था जिस पर मैं बात न कर सकता था, और न केवल मैं बातचीत में शामिल रह सका बल्कि गहन चर्चा में भी शामिल हो सका। वे पांचों दंग रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो जेंगान के दोस्त इतने उच्च गुणवत्ता वाले होंगे। पहले तो मैंने सोचा कि वह लड़की गरीब परिवार से है, उसकी हालत खराब है और स्वाभाविक रूप से उसकी दृष्टि भी कमजोर है। आखिरकार आजकल बहुत कम लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। एक और तो पारिवारिक परिस्थितियां इसकी इजाजत नहीं देती। आमतौर पर गरीब परिवारों में 5 या 6 बच्चे होते हैं। सब स्कूल कैसे जा सकते हैं? बेशक लड़कियों की ही बलि दी जाती है। उच्च शिक्षा प्राप्त किए बिना किसी लड़की के लिए ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त करना बिल्कुल असंभव है। 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत करने के बाद जिया जी ने अंततः अलविदा कहा। जो जेंगान ने गाड़ी में लौटने से पहले जिया जी को विशेष रूप से वापस भेज दिया। जब वह अपनी सीट पर लौटा तो उसने देखा कि 5 लोग उसे गौर से देख रहे हैं। जो जेंगान ने थोड़ा असहज होकर अपना चेहरा छुआ। तुम क्या कर रहे हो? मैंने आज सुबह अपना चेहरा धोया था। बूढ़े जो, मिस जिया एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, मैं आपको बताता हूँ, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। कृषि सुधार क्षेत्र में आने पर ऐसी लड़की निश्चित रूप से एक आकर्षक वस्तु होगी। वह न केवल सुंदर है बल्कि योग्य और अच्छी वक्ता भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, वे नेता इसे हथियाने की कोशिश में पागल हो जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले हमला करें। जो जेंगान अवाक रह गया। ये लोग हमेशा बात करने के लिए कोई न कोई विषय ढूंढ ही लेते हैं और इनका परिवार खुशहाल होता है। जिया जी ने खिड़की से बाहर देखा और उसे पता था कि वे किसी दूसरे दिन पहुंचेंगे। अंततः हम इस ट्रेन में चढ़ गए और यदि हम दोबारा उतर गए तो कोई भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। शायद बाद की पीढ़ी के युवाओं को ये पता नहीं होगा कि 3 दिन और 3 रात तक ट्रेन में सफर करना कैसा लगता है। सच कहूँ तो लोग पागल हो जाएंगे, उनके पूरे पैर सुन्ना हो जाएंगे, जैसे कि वे उनके अपने ही न हों। यह अंततः यहाँ है। अचानक विपरीत दिशा से एक मालगाड़ी उनकी ट्रेन के पास से गुजरी। लियू कियानजिन, जो जिया जेड के बगल में बैठे थे, ने उत्सुकता से कहा। जियो जिया, लकड़ी का वह टुकड़ा उड़ सकता है। ग्रीष्म संक्रांति पर पीछे मुड़कर देखना। वे केवल इतना देख पाए कि विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन का एक बड़ा लट्ठा उनकी ओर उड़ता हुआ आ रहा था। जिया जी ने सहज रूप से मुड़कर अपने बगल में बैठे लियू कियानजिन को पकड़ लिया और उसे अपनी सीट पर बैठा दिया। गाड़ी में बैठे लोगों को चिल्लाकर कहा, जल्दी से उठो और नीचे बैठ जाओ, अपना सिर पकड़ लो और पास में मौजूद चीज को पकड़ लो। इस भारी प्रभाव ने जिया जेड के शब्दों को तुरंत दबा दिया। जिया जी को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। उसने कोई वस्तु पकड़ी और बाहर उड़ गया। जिया जी ने खुद को हवा में उड़ते हुए देखा और फिर वह किसी कठोर चीज से टकराया। उसे अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे वह बहुत घबरा गया, क्योंकि उसने देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा खिड़की के शीशे से टूटकर उसके सामने आ खड़ा हुआ था। बस तभी मुझे ऐसा लगा कि मैं लट्ठे से कुचला जाऊंगा। लट्ठा वास्तव में उसकी नाक के ठीक सामने, उससे थोड़ा सा दूर रुक गया। मेरे कानों में एक दर्दनाक कराह सुनाई दी। बहुत दर्द हो रहा है, क्या हुआ? मेरी मदद करो, मुझे चोट लगी है। जिया जी का हाथ किसी ने कसकर पकड़ लिया था और उसे इसका एहसास तभी हुआ जब वह पलटा। अभी अभी उसने सोचा कि उसने कुछ पकड़ लिया है, लेकिन वह लियू जियान निकला। न केवल वह लियू जियान को पकड़े हुए थी बल्कि लियू जियान भी बड़ी ताकत से उसकी बांह को कसकर पकड़े हुए था। जिया जी, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। लियू जियान का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी, जिनमें से प्रत्येक सोयाबीन से भी बड़ी थी। जिया जी ने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और महसूस किया कि लियू जियान का हाथ सामने की छोटी डाइनिंग टेबल से टकराया होगा और अब यह एक अजीब और विकृत कोण पर था। जिया जी के चारों ओर लगातार रोने की आवाजें आ रही थी। जिया जी ने अपना सिर नीचे किया और उसकी बांह कसकर पकड़ ली। लियू जियान ने दर्द से आंखें चौड़ी कर ली। ग्रीष्म संक्रांति, ये दर्द होता है, ये दर्द होता है। ग्रीष्म संक्रांति, क्या मैं मरने जा रहा हूँ? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी हड्डी टूट गई है, तुम मर जाओगे। बस इसे सहन करो, मैं तुम्हारी हड्डियों को सीधा करके उन्हें स्थिर कर दूंगा। जिया जी का चेहरा काला पड़ गया। उसे सबसे ज्यादा नफरत तब होती थी जब लोग जिंदगी और मौत के बारे में बात करते थे। उसने अपनी जिंदगी सिर्फ मरने के लिए दोबारा नहीं जी थी। अभी अभी उसके जीवन पर जो आघात लगा था उससे वह उबर नहीं पाई। एड्रेनालाइन रश के बाद अब मैं वास्तव में थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा हूँ। लियू जियान को लगा कि उसके हाथ में दर्द अब उसका अपना नहीं रहा, जिससे उसे लगा कि जीवन मृत्यु से बेहतर है कि वह मर जाए। आह जिया जी, क्या तुम्हें मुझसे कोई दुश्मनी है? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जब दर्द अपने चरम पर पहुंच गया तो लियू जियान चिल्लाया और बेतहाशा गालियां देने लगा। वो अचानक उसके मुंह में रुमाल ठूंस दिया गया। उसने सोचा कि यह रुमाल है, लेकिन उसे तुरंत ही अपने मुंह में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ये किसी व्यक्ति द्वारा पहना गया ऊनी दुपट्टा निकला। मेरे मुंह में तुरंत ही खट्टा स्वाद फैल गया। लियू जियान का ध्यान तुरंत यहाँ चला गया। वो लियू जियान ने बहुत संघर्ष करना चाहा, लेकिन उसने जिया जी की आवाज सुनी। आगे बढ़ो, मेरी मदद करो, उसे पकड़ो और स्थिर रखो। मैंने अभी अभी अपनी आंख के कोने से लियू कियानजिन को देखा था। सौभाग्य से मुझे लट्ठा नहीं लगा, बल्कि मैं सीटों के बीच के गलियारे में छिप गया। जब लियू कियानजिन ने यह सुना तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। यद्यपि वह मूर्ख है और उसकी बुद्धि कम है, केवल एक किशोर के बराबर, वह जानता है कि जिया जी उसके लिए अच्छा है। ये रास्ते में पड़ने वाली ग्रीष्म संक्रांति के लिए भी बहुत अच्छा है। लगभग आदेशों का पालन करें। दो बड़े हाथों ने लियू जियान के कंधों को कसकर पकड़ लिया। लियू जियान संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन वह अपना शरीर मोड़ नहीं पा रही थी। जब लियू जियान बेहोश होने वाली थी तो किसी ने अचानक उसे छोड़ दिया। ठीक है, तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है, इधर उधर मत हिलना डुलना या किसी चीज को मत छूना, वरना तुम्हारी हड्डियां फिर से उखड़ सकती हैं। जिया जी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ लियू जियान को जाने दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन पुनर्जन्म लेने के बाद वह सबसे पहले अपने दुश्मन को बचाएगी। ये सचमुच बहुत बुरा भाग्य है। लेकिन वह किसी और चीज का ध्यान नहीं रख सके क्योंकि उनके आसपास के कई लोग घायल हो गए थे। जिया जी ने लियू कियानजिन को खींच लिया और लियू कियानजिन के लिए उसके पास रहना सुरक्षित था। दोनों ने घायलों को बचाना शुरू कर दिया। घटना घटते ही जो जियान और उसके साथी अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए। दुर्घटना में सिर्फ दो बोगियां शामिल थीं। लकड़ियां ले जा रहे ट्रक को बांधने वाला तार अचानक टूट गया, जिससे लकड़ियां उड़कर दोनों बोगियों से टकरा गईं। ट्रेन में मौजूद सभी चिकित्साकर्मी और सक्षम कर्मचारी बचाव कार्य में शामिल हो गए। रेलगाड़ी रुक गई है। जो जियान और जियांग यिफान सीधे इस गाड़ी में चढ़ गए जो उनके सबसे करीब थी। ट्रेन में भयावह दृश्य देखकर कई लोगों को उल्टी आने लगी। सौभाग्यवश केवल दो लकड़ियां ही कांच की खिड़की को तोड़कर अंदर जा गिरी। वह अपनी पीठ पर एक अधेड़ उम्र की महिला को उठाए हुए था, जिसका पैर टूटा हुआ था और उसकी टक्कर जियाजी से हो गई, जो घायल महिला को सहारा दे रही थी। उसने चारों ओर देखा और पाया कि जिया जैद के शरीर पर कोई चोट नहीं थी और उसने अंततः राहत की सांस ली। वास्तव में वह अभी जिया जैद के बारे में बहुत चिंतित था, लेकिन जिम्मेदारी के कारण वह चुपचाप खड़ा होकर उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। अब जब मैंने देखा कि जिया जी सुरक्षित और स्वस्थ है तो मैं अंततः निश्चिंत हो सकता हूँ। जिया जी, क्या तुम ठीक हो? जिया जी ने जो झेंगन को एक घायल आदमी को ले जाते हुए देखा, जिसका पैर टूटा हुआ था, जिसके पैर पर जोरदार चोट लगी थी। पैर शायद टूटी हुई धातु से सीधे कट गया होगा। उस बड़े घाव ने शायद कोई धमनी काट दी होगी और खून बह रहा होगा। जिया जी ने भौहें चढ़ाई। अगर खून इसी तरह बहता रहा तो उस व्यक्ति को बस से उतार लेने पर भी वह शायद अत्यधिक खून बहने से मर जाएगा। उन्होंने जल्दी से घायल व्यक्ति को लियू कियानजिन को सौंप दिया। आगे बढ़ो, उसे नीचे उतरने में मदद करो, मेरे पास दौड़कर मत आओ। कियानजिन ने तुरंत सिर हिलाया और घायल आदमी को एक हाथ से उठा लिया। वह बहुत मजबूत और लंबा था। जियो जिया, मैं इधर उधर नहीं भागूंगा। जिया जी ने जो झेंगन की पीठ पर घायल व्यक्ति के पैरों को अपने हाथों से दबाया। उसने घायल व्यक्ति की धीमी कराह सुनी और समझ गया कि घायल व्यक्ति अभी बेहोश नहीं हुआ है। पीड़ित की एक प्रमुख धमनी कट गई है, उसे अत्यधिक रक्तस्राव होगा। जो झेंगान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी हथेलियों पर चिपचिपाहट थी। उसे पता चल गया कि बहुत सारा खून बह गया है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? दरअसल, जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पहले से ही पता था कि ट्रेन में केवल एक ही अस्थायी डॉक्टर है। वे अब ऐसी जगह पर हैं जहां आसपास कोई गांव या दुकान नहीं है। अगर ट्रेन रेडियो के जरिए स्टेशन से संपर्क भी कर ले तो भी बचाव दल को पहुंचने में कई घंटे लग जाएंगे। जिया जी ने लियू कियानजिन को उस व्यक्ति को एक अस्थायी बचाव स्टेशन में रखने में मदद की। यह एक बचाव स्टेशन है जिसे ट्रेन में यात्रियों द्वारा स्वतः निर्मित किया गया है तथा इसके लिए ट्रेन परिचारक द्वारा सरल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। सभी ने अपने बैग और सूटकेस का उपयोग घायलों के लिए अस्थायी विश्राम स्थल बनाने के लिए किया। जिया जी ने झोउ झेंगन द्वारा पहनी गई शर्ट पर एक नज़र डाली। झोउ झेंगान, अपनी शर्ट उतारो और मुझे दे दो। झोउ झेंगान का सिर घूम गया। आपकी कमीज सूती है, इसका इस्तेमाल खून रोकने के लिए धुंध की तरह किया जा सकता है। जल्दी करो, जिया जी जोर से चिल्लाया। झोउ झेंगान के विचार एकदम से चकनाचूर हो गए और उसके कान लाल हो गए। इतने बड़े आदमी के मन में ऐसे गलत विचार कैसे आ सकते हैं? क्या वह अभी भी मनुष्य है? सफ़ेद शर्ट फटी हुई थी। जिया जी ने झोउ झेंगन को घायल व्यक्ति के धमनी के घाव को कसकर बांधने में मदद करने का निर्देश दिया। उसके पास खून बहने से रोकने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। झोउ झेंगन ने टूर्निकेट बांधा और देखा कि जो रक्त अभी हिंसक रूप से बह रहा था वह धीरे धीरे जमने लगा और वह खुशी का भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। यद्यपि घायल व्यक्ति का चेहरा अभी भी पीला था, फिर भी वह पहले से काफी बेहतर था। आप ये कैसे जानते हैं? मैं पहले मेडिकल स्कूल जाना चाहता था, इसलिए मैंने पढ़ाई की, लेकिन वह मुश्किल से आधा भरा है। बेशक जिया जी झोउ झेंगन को यह नहीं बता सका कि यह कुछ ऐसा था जो उसने अपने पिछले जीवन में सीखा था। कृषि सुधार क्षेत्र में स्थितियां बहुत ही साधारण हैं तथा किसी भी टीम में चिकित्सा क्लिनिक तक नहीं है। यदि आप डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो आपको क्लिनिक ढूंढने के लिए सैकड़ों मील पैदल चलना पड़ेगा। यदि आप रेगिस्तान में सैकड़ों मील की यात्रा करते हैं तो हो सकता है कि आपको भेड़ियों या कुछ जंगली जानवरों ने खाना खिला दिया हो। आप रास्ता भटक भी सकते हैं और प्यास या ठंड से मर भी सकते हैं। जो कोई भी 10 साल से अधिक समय तक कृषि क्षेत्र में रहा है उसने ये सरल प्राथमिक चिकित्सा कौशल अवश्य सीखा होगा। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर घाव पर सिर्फ टांका लगाने के लिए भी ऐसा करना पड़े तो भी वह एक शब्द भी नहीं कहेंगे। दोनों फिर से व्यस्त होने लगे। जिया जी ने घायलों को उनके घावों पर पट्टी बांधने में मदद की। झोउ झेंगान घायलों को ट्रेन से उतारने में व्यस्त था। जब अंधेरा हो गया तो बचाव दल अंततः वहां पहुंचा। साथ आए डॉक्टरों और नर्सों ने घायलों को एम्बुलेंस में बिठाया और एक विशेष वाहन उन्हें ले गया। शेष यात्रियों को अगले स्टेशन पर ले जाने और अस्थायी विश्राम के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। ट्रेन अब रुक गई है। झोउ झेंगन जिया जेड के बगल में बैठा था। लोगों के दो समूह पहले ही जा चुके हैं और वे आखिरी समूह हैं। अब अंधेरा हो चुका है। तापमान धीरे धीरे गिर गया। जिया जी अपने साथ कोई कपड़े नहीं लाया था और शाम तक वह ठंड से कांप रहा था। मुझे जहां बैठा था वहां से उठकर खड़ा होना पड़ा और गर्म रहने के लिए आगे पीछे चलना पड़ा। झोउ झेंगान, जो पहले से ही थकावट के कारण उसके बगल में सो गया था, अचानक कदमों की आवाज से जाग गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह दुबला पतला व्यक्ति आगे पीछे घूम रहा है, अपने हाथों पर फूंक मार रहा है और अपनी उंगलियां रगड़ रहा है। अचानक उसकी नींद खुली और उसने अपने कोट पर हाथ रखा। वे यहाँ के मौसम के आदी थे, इसलिए बाहर जाते समय उन्होंने पहले से ही मोटे कपड़े तैयार कर रखे थे। यद्यपि वह आधी रात को जंगल में बैठा था, फिर भी कपड़े पहनने के बाद उसे ज्यादा ठंड महसूस नहीं हुई। झोउ झेंगान ने अपने आसपास के लोगों को देखा जो पहले ही थक चुके थे। दरअसल वहां ज्यादा लोग नहीं बचे थे, बस लगभग 10 ही। अगली बस एक घंटे से अधिक समय में आनी थी, इसलिए मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली और ये लगभग इसी समय थी। वह खड़ा हुआ और अपना कोट उतार दिया। जिया जी की तरफ चलो, इस पर डाल दो। जिया जेड के मना करने का इंतजार किए बिना उसने सीधे कोट उसके कंधों पर डाल दिया। जिया जी को तुरंत गर्मी का एहसास हुआ। कंधों पर लिपटे कोट में उसे अभी भी झोउ झेंगन के साबुन और तंबाकू की हल्की सी खुशबू आ रही थी। बहुत अधिक नहीं, लेकिन अच्छी खुशबू आती है। कॉमरेड झोउ, नहीं, रात में बहुत ठंड है। आप इसे पहन लीजिए, मैं बस आने तक थोड़ी देर पैदल चलता हूँ। जब जिया जी ने देखा कि झोउ झेंगान अभी भी थोड़ा नींद में था तो उसने सोचा कि वह जाग गया होगा और उसने खुद को आगे पीछे चलते हुए देखा होगा, जिससे उसकी शिष्ट भावना जागृत हुई। वह अपने कंधों से कोट उतारना चाहता था, लेकिन झोउ झेंगान ने उसकी उंगलियां दबा रखी थी। झोउ झेंगान के बड़े हाथ बहुत गर्म थे। तुमने कहा था कि हम दोस्त हैं, इसलिए अगर हम दोस्त हैं तो मेरे साथ विनम्र मत बनो। इस स्थिति में कोई भी पुरुष किसी महिला को कष्ट नहीं सहने देगा। झोउ झेंगान ने मौके पर दो बार छलांग लगाई। मैं कुछ देर से सो रहा हूँ और अब मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ। मैं थोड़ा बहुत दौड़ सकता हूँ, जो तुमसे कहीं बेहतर है। मैं आपको बता दूँ, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे छोटा चूल्हा कहती थी। क्योंकि मैं पूरी तरह से भट्टी की तरह गर्म हूं, तुम वहां जा सकते हो और अपना कोट पहनकर थोड़ी देर आराम कर सकते हो। झू झेंगान ने फिर से अपनी घड़ी देखी। मेरा अनुमान है कि बस 1 घंटे में यहां आ जाएगी। आप थोड़ी देर के लिए झपकी ले सकते हैं, ज्यादा ठंड नहीं होगी। बोलते हुए उसने उसकी ओर हाथ हिलाया और जिया जी को वहां खड़ा देखा, जिसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह रोने वाली हो। वह जल्दी से बोली, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें रुलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जिया जी ने सूंघा, आप गलत हैं, मैं रो नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं गलत था। कॉमरेड जिया जी, जाकर आराम करो। जिया जी को देखकर लगा कि वह अपना कोट लपेटे हुए सामान पर टेक लगाए बैठा है। झू झेंगन मुस्कुराया। वह नहीं जानता था कि लड़की की पारिवारिक स्थिति क्या थी, लेकिन ये पता लगाना आसान नहीं था। न केवल वह खराब कपड़े पहनता था, बल्कि वह खाने के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाता था। हालांकि वह देख सकता था कि यह लड़की बहुत समझदार थी और अपनी भिन्नताओं के बारे में स्पष्ट थी, और शायद ही कभी दूसरों का फायदा उठाना चाहती थी। वह एक अच्छी लड़की है, आत्मनिर्भर और आत्मप्रेमी है। इस समय उसकी मदद दिल से आई थी, और निश्चित रूप से इसलिए नहीं थी कि जिया जी उसे वह स्वाद दे सकती थी जिसकी उसे कमी थी। 1 घंटे से भी अधिक समय बाद कार के इंजन की आवाज से सभी लोग जाग गए। इस समय लोग सामान गाड़ी में चढ़ाने लगे। सामान आखिरी गाड़ी में नहीं चढ़ाया जा सका और जल्द ही सभी लोग बिना सामान के रह गए। झू झेंगान ने 3 सूटकेस उठाए और उन्हें सीधे कार में रख दिया। जैसे ही वह बस से उतरने ही वाली थी, उसने देखा कि जिया जी 3 बड़े बैग हाथों में लिए दरवाजे की तरफ घुसने की कोशिश कर रही है। उसने झट से उसके हाथों से बैग ले लिए और शिकायत करने लगी, बस हर बार मुझे कम गले लगाना, तुम्हारे जैसी लड़की इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है। जिया जी अपने हाथ में आखिरी बैग पकड़े हुए कार में घुस गया। सिर्फ 3 बैग बचे हैं, अगर मैं जिद्दी नहीं हूं तो किसी को ट्रिप पर क्यों भेजूं। अपना बैग नीचे रखकर जिया जी अपनी सीट पर बैठ गया। इस तरह की बड़ी सेडान इन दिनों मिलना मुश्किल है, या फिर बीच रास्ते में ही खराब हो गई। इस तरह की सुविधा केवल रेलवे ब्यूरो के लोग ही ले सकते हैं, अन्य स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। झू झेंगान उसके पास बैठ गया और अपने माथे से पसीना पोंछने लगा। ये यात्रा काफी रोमांचकारी है। इससे पहले कि जिया जी कुछ कह पाती, बस में चढ़े साथियों ने पंजीकरण शुरू कर दिया था और उनमें से प्रत्येक को 2 उबले हुए बंस और 1 अंडा दिया गया था। जब संदेश उन दोनों के पास आया तो झू झेंगान जानबूझकर खड़ा हो गया। जिया जी, कृपया पहले मुझे खाना लाने में मदद करें, मुझे देखने दो कि क्या सभी लोग यहाँ हैं। जिया जी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत सहमत हो गई। ओह देखो, जियाओ लियू, लियू कियानजिन कहाँ है, मैं बस में चढ़ते समय देखना भूल गया था, मुझे नहीं पता कि वह अभी तक बस में चढ़ा है या नहीं। लियू कियानजिन दूसरों का अनुसरण नहीं करना चाहता था, इसलिए वह जिया जी का अनुसरण करके खुश था। झू झेंगन सहमत हुए। जिया जी ने झू झेंगन और खुद से उबले हुए बंस और अंडे लिए और अपनी सीट पर अकेले बैठकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद झू झेंगान लियू कियानजिन के साथ आया। लियू कियानजिन अपनी भाप से पका हुआ बन अपनी बाहों में लिए हुए खुशी से खा रहा था। जियो जिया, स्टीम्ड बंस हैं। उन्होंने उत्साहपूर्वक अपना आधा खाया हुआ स्टीम्ड बन भी सौंप दिया। इस बच्चे की मानसिक स्थिति किशोर जैसी भी नहीं है और वह दुनिया के तौर तरीकों को भी नहीं समझता। लियू कियानजिन, आओ और खाओ, मेरे पास कुछ है। झू झेंगान ने लियू कियानजिन की ओर देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि इतने बड़े लड़के के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। लियू कियानजिन जिया जेड के बगल वाली सीट पर बैठने ही वाले थे कि झू झेंगन ने उन्हें रोक दिया। अपने बगल वाली सीट की ओर इशारा करते हुए, तुम वहां बैठो, लियू कियानजिन ने मुंह बनाकर एक बच्चे की तरह असंतुष्ट होकर कहा। नहीं, मैं जियाओ जिया का अनुसरण करना चाहता हूँ, यहाँ हमेशा पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था होती है, आप किसी और की सीट नहीं ले सकते। झू झेंगान ने लियू कियानजिन को बड़ी गंभीरता से देखा। ये सुनकर लियू कियानजिन ने अपना सिर झुकाया और सोचा, ऐसा लगा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो, और फिर वह बगल वाली खाली सीट पर भाप से पका हुआ बन लेकर बैठ गया। मेरी माँ कहती थी कि अच्छे बच्चों को दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। झू झेंगान फिर बैठ गया और जिया जी ने उसे उबले हुए बंस और अंडे दिए फुसफुसाते हुए। लियू कियानजिन से परेशान मत हो, हालांकि जियाओ लियू इतना बड़ा है, उसका दिमाग असल में कमजोर है। बचपन में ही उसका दिमाग क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए उसकी बुद्धिलब्धि कुछ साल के बच्चे जितनी ही है। मैंने उससे कहा कि वह मेरे पीछे आए क्योंकि मुझे डर था कि दूसरे लोग उसे परेशान करेंगे। हालांकि जिया जी लियू कियानजिन की देखभाल करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि एक बार जब वह पुनः प्राप्त क्षेत्र में आ जाएगा तो उसकी देखभाल करना इतना आसान नहीं होगा। आखिरकार लियू कियानजिन एक पुरुष है और वह एक महिला है, और जब समय आएगा तो पुरुष और महिला शिक्षित युवाओं को अलग कर दिया जाएगा। लियू कियानजिन को उन शिक्षित पुरुष युवकों के साथ रहना पड़ा। यह अवश्यंभावी था कि वे शिक्षित पुरुष युवा लियु कियानजिन को धमकाएंगे। लियु कियानजिन का जीवन उनके पिछले जीवन में आसान नहीं था, लेकिन सौभाग्य से वह बाद में खेतों में काम करने चले गए। लियु कियानजिन की अपार शक्ति ने उसे कई लोगों का समर्थन जीतने में मदद की। आखिरकार कई शिक्षित युवा बेकार थे। बहुत से लोग चाहते थे कि लियु कियानजिन उनका कुछ बोझ बांटने में मदद करें, इसलिए उन्होंने लियु कियानजिन को मनाने के लिए कई तरीके आजमाए। लेकिन अधिकांश समय लियु कियानजिन एक बच्चे की तरह है जो अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने में असमर्थ है और धोखा खा जाएगा। उसे डर था कि लियु कियानजिन का अंत उसके पिछले जन्म जैसा होगा। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं थी। उसकी क्षमता सीमित थी और वह लियु कियानजिन को अपने साथ नहीं रहने दे सकता था। ये तो छोड़ ही दीजिए कि उसके वरिष्ठ अधिकारी भी सहमत नहीं होंगे, यहां तक कि टीम के नेता भी बाहर की अफवाहों को देखते हुए ऐसा नहीं करेंगे। ये सुनकर झोउ झेंगान ने आह भरी। अभी अभी मैंने उसे एक घायल व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते हुए देखा और उसने सांस भी नहीं ली। एक व्यक्ति 5 बड़े बैग ले जा सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा होगा। उसने मुस्कुराते हुए छिला हुआ अंडा अपने मुंह में डाला और तुरंत संतुष्टि से अपनी आंखें बंद कर ली। सभी प्रकार की सुगंधों का स्वाद ले पाना दुनिया में एक अद्भुत बात है। उसने मन बना लिया था कि जब वह गंतव्य पर पहुंचेगा तो जियाजी को पकड़कर अपनी टीम में शामिल कर लेगा। वैसे भी शिक्षित युवाओं के लिए कोटा हेतु आवेदन करने की जिम्मेदारी कप्तान की होती है, इसलिए कप्तान के रूप में उसका पद अभी भी सुविधाजनक हो सकता है। टीम के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, इसलिए समय आने पर वह उन्हें कुछ सम्मान देंगे। बेशक हम लियु कियानजिन को भी वहां ले जा सकते हैं। ये युवक बहुत ताकतवर है और निश्चित रूप से एक अच्छा कार्य करता है। भविष्य में उसे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने लियु कियानजिन के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त की। वो बहुत बड़ा है और ज्यादा होशियार भी नहीं है। अगर उसे किसी और टीम में रखा जाए तो उसे आसानी से धमकाया जा सकता है, लेकिन अगर उसे मेरी निगरानी में रखा जाए तो कम से कम मैं उसकी देखभाल तो कर ही सकती हूँ। जियाजी ने उबले हुए बंस और अंडे खाए और उसका गला रुंध गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे उबलते पानी का एक कप दिया गया। मैंने ये लंच बॉक्स ट्रेन में एक साथी से उधार लिया था। हमारे पास अभी और कुछ नहीं है, इसलिए तुम बस एक घूंट पी लो और बाकी आधा लियु कियानजिन के लिए छोड़ दो। जियाजी थोड़ा भावुक हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने झोउ झेंगान न सिर्फ ईमानदार होगा बल्कि इतना उत्साही भी होगा। खुद की देखभाल करने की बात तो दूर, अब वह लियु कियानजिन की भी देखभाल करने लगा है। झोउ झेंगान, धन्यवाद। अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करता हूँ और दोस्त धन्यवाद नहीं कहते। झोउ झेंगान ने अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया जिससे एक ऐसी मुस्कान प्रकट हुई जो बहुत ही शांत और गर्मजोशी भरी थी। टिमटिमाती रोशनी में झोउ झेंगान का चेहरा और भी आकर्षक लग रहा है। पानी पीने के बाद लियु कियानजिन अपनी सीट पर पीछे झुक गया और उसे नींद आने लगी। लगभग 3 घंटे चलने के बाद वे अंततः रेलवे गेस्ट हाउस पहुंचे। वे आज तो जा नहीं सकते थे, इसलिए यहां सिर्फ एक रात ही सो सकते थे। जब रेलवे उन्हें ले जाने के लिए ट्रेन का इंतजाम करेगा तब वे चले जाएंगे। सभी लोग गेस्ट हाउस में दाखिल हुए। लियु कियानजिन की अधिक सुविधाजनक देखभाल करने के लिए झोउ झेंगान ने लियु कियानजिन को अपने साथ एक ही कमरे में सोने दिया। जब उसके साथियों को लियु कियानजिन की हालत के बारे में पता चला तो किसी ने उसे तंग नहीं किया, बल्कि सभी ने उस बड़े आदमी का पूरा ध्यान रखा। जब जियाजी पहुंची तो उसे गेस्ट हाउस के 5 लोगों वाले कमरे में एक बिस्तर दिया गया। संयोग से उसका पड़ोसी लियु जियान था। लियु जियान और बाकी लोग अभी अभी सोए थे। जियाजी बाथरूम में नहाने गया और फिर बिस्तर पर लेट गया। वह बहुत थक गया था। अगले दिन वे दोपहर तक सोते रहे और फिर उन्हें खाने के लिए बुलाया गया। दुर्घटना के कारण गेस्ट हाउस ने उन्हें भोजन और आवास की व्यवस्था की। रेलवे के कुछ खास अधिकारी भी उनके पास अपनी संवेदना व्यक्त करने आए थे। ये बहुत बड़ी बात थी और इसे एक गंभीर दुर्घटना माना जा सकता था। उनकी जांच की गई और पाया गया कि उन्हें कोई गंभीर समस्या नहीं है। जिन लोगों को कोई चोट नहीं आई है उनके लिए आज दोपहर ट्रेन से उनके गंतव्य तक जाने की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को 50 किलोग्राम खाद्य कूपन और एक आरामदायक बैग भी दिया गया। यह मेरी सराहना का एक छोटा सा प्रतीक है। जियाजी ने उसे खोला और देखा। कंफर्ट बैग के अंदर तौलिए, साबुन, टूथब्रश, चाय के कप, लंच बॉक्स और चॉपस्टिक थे। इन दिनों सामान से भरा यह बैग बहुत कीमती है। मेरे पास जो कमी थी वह बस वही थी जिसकी मुझे संयोगवश जरूरत थी। सभी घायल अब अस्पताल में हैं और उनके लिए ट्रेन में चढ़ने की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। ट्रेन में चढ़ने से पहले रेलवे नेता ने उनमें से प्रत्येक को बिस्कुट का एक पैकेट दिया। ये कैल्शियम दूध बिस्कुट है और यह एक बड़े बैग में आता है। यह मुआवजे का एक छद्म रूप है। सभी लोग खुशी खुशी ट्रेन पर चढ़ गए। जियाजी और लियु जियान इस बार बस एक साथ बैठे और लियु कियानजिन भी उनके साथ रहे। लियू जियान अपनी जान बचाने के लिए जिया जेड के प्रति आभारी थी, इसलिए अब वह जिया जी को अपना दोस्त मानती थी। उसके हाथ में बस एक साधारण फ्रैक्चर था, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी। रेलवे द्वारा जारी एक परिचय पत्र लेकर वह सीधे ट्रेन से खेत पहुंच गई। फार्म पर पहुंचने के बाद आप 3 महीने तक आराम कर सकते हैं। जिया जी ने उसकी लटकती हुई बांह को देखा और मुस्कुराए। आपको फार्म पर विशेष सुविधा मिलेगी। आप 3 महीने तक बीमार करने वाला खाना खा सकते हैं। इस वर्ष सबसे विशेष उपचार मरीजों के लिए भोजन था, जिसके तहत उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम से अधिक उत्तम अनाज उपलब्ध कराया जा सकता था। लियू जियान दर्द से कराह उठी और अपनी उंगली से जिया जेड के माथे पर प्रहार करना चाहती थी। मैं तुम्हें ये स्वादिष्ट भोजन दूंगा, क्या तुम इसे चाहोगे? ठीक है, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। इस बार यात्रा तेज होगी। ट्रेन में रात्रि भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया गया था, इसलिए इस बार सभी ने भोजन पर बचत की, अच्छी नींद ली और अगली सुबह जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंच गए। जब वे बस से उतरेंगे तो वहां एक विशेष रिसेप्शनिस्ट मौजूद होगा जो स्टेशन से बाहर निकलते ही उनके नाम के अनुसार उनका पंजीकरण करेगा। हजारों लोगों ने स्टेशन चौक पर एक विशाल चौक बनाया। एक एक करके कर्मचारी हाथ में सूची लेकर आए, नाम पुकारे और इन लोगों को ले गए। वे ग्रीष्म संक्रांति के दौरान वहां खड़े थे। अपना नाम पुकारे जाने पर वह लगभग दंग रह गई। उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, वह जो जेंगान थी। मैं अपनी अच्छी मित्र मिस एपल की नई पुस्तक की अनुशंसा करना चाहूंगी। जब जिया जी आगे की ओर चला तो जो जेंगन को देखकर वह दंग रह गया। जो जेंगन, अब से आप मुझे कैप्टन जो कहेंगे। मैं 6th स्क्वाड्रन का कप्तान हूँ। आप सभी मेरी टीम का अनुसरण करेंगे। जो जेंगान ने भौहें सिकुड़ी और गंभीरता से बोला। जिया जी ने तुरंत सिर हिला दिया। एक परिचित से मिलना और जो जेंगन के अधीन काम करना स्वाभाविक रूप से उसकी अपेक्षा से कहीं बेहतर था। जब वह लियू कियानजिन से एक एहसान मांगने वाला था और पूछने वाला था कि क्या उसे उसके साथ एक ही समूह में नियुक्त किया जा सकता है, तो उसने जो जेंगान को लियू कियानजिन और लियू जियान के नाम पुकारते हुए सुना। दूसरों की चिंता करना बंद करो, जो जेंगान ने होठों पर मुस्कान के साथ जिया जेड के पास से गुजरते हुए फुसफुसाते हुए कहा। जिया जी जानबूझकर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। जो जेंगन एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आज जो जेंगन ने जो किया उसके कारण वह भविष्य में निश्चित रूप से इस दोस्त के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। लियू कियानजिन और लियू जियान ये देखकर बहुत खुश हुए कि जिया जी उनसे अलग नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने आपस में गहरी दोस्ती भी कायम कर ली। हालांकि जब उन्होंने वह गाड़ी देखी जिसमें वे बैठे थे तो लियू जियान अभी भी थोड़ा हक्का बक्का रह गया। ये है, इसे मत देखो, ये तो बस एक घोड़ा गाड़ी है। हमारी टीम में इतनी कारें नहीं हैं। सारे ट्रैक्टर खेती के काम आते हैं। हम तुम्हें उनमें कैसे बिठा सकते हैं? ठीक है, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि वहां गाड़ी है और आपको वहां तक पैदल नहीं जाना पड़ेगा। हम अभी भी खेत से सैकड़ों मील दूर हैं, इसलिए जल्दी करो और बिना समय बर्बाद किए कार में बैठ जाओ। जो जेंगान ने सभी को गाड़ी में चढ़ने का निर्देश दिया और जिया जी को कोई और विशेषाधिकार नहीं दिया। इससे जिया जी को और अधिक राहत महसूस हुई। उसे ये भी डर था कि जो जेंगान उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा और दूसरों की आलोचना का शिकार होगा। आजकल ईर्ष्यालु लोग बहुत ज्यादा हैं। अप्रत्याशित रूप से उनकी गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जियांग यिफान था। जब जियांग यिफान ने जिया जी को देखा तो वह मुस्कुराया और नमस्ते कहा। जियो जिया, हम फिर मिलेंगे। कॉमरेड जियांग, हम फिर मिलेंगे। तो आप भी 6th ब्रिगेड से हैं? लेकिन कोई बात नहीं, ये जो जेंगन का दोस्त है। मैंने सुना है कि वह जो जेंगन का अच्छा दोस्त और बचपन का दोस्त है। वह और जो जेंगन दोस्त हैं, इसलिए जियांग यिफान को बुरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जिया जेड के पास अभी भी जियांग यिफान के बारे में कुछ राय है। जियांग यिफान बहुत चिकना और थोड़ा चिकना है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज में अपनी जगह बनाई है। लेकिन जो जेंगान का दोस्त होने के लिए उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? मैं 6th ब्रिगेड से हूँ। यहाँ हमारी सारी पुनः प्राप्त भूमि आंशिक रूप से विशेष इकाइयों के अधिकार क्षेत्र में है और शेष भाग आप शिक्षित युवाओं और आपके परिवारों का है। तैयार रहें, आप जिस स्थान पर जाएंगे वह आपकी कल्पना से पूरी तरह भिन्न हो सकता है। जिया जी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हाँ, वह उन जगहों पर पहले भी जा चुकी थी जहां वे गए थे। जब वह उस वर्ष वहां गई तो वह भी उस स्थान पर पहुंची और लगभग डर के मारे रोने लगी। लेकिन अगर मैं 1 साल पहले चला गया होता तो ये कितना मुश्किल होता। चाहे ये कितना भी कठिन क्यों ना हो, ये तो बस एक डगआउट है। लड़की के बेपरवाह भाव देखकर जियांग यिफान मुस्कुराया। शहर की इन पढ़ी लिखी युवतियों ने इस सीमांत क्षेत्र की कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया था, इसलिए शायद वे अभी भी कल्पना में डूबी हुई थीं। जैसे जब मैं पहले यहाँ आया था तब हालात आज से कहीं ज्यादा बदतर थे। कम से कम अब तो डगआउट तो हैं। पहले तो उनके पास डगआउट कहाँ थे। लेकिन पहली नज़र में मुझे केवल बंजर गोभी रेगिस्तान ही दिखाई दिया। वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन भेड़िए समय समय पर दिखाई देते थे और पानी लाने से भी भेड़ियों का पेट भर जाता था। जो कोई भी इसे देखेगा उसे एक बंजर नमक दलदल और सरकंडे का मैदान दिखाई देगा, जहां किसी घर का कोई निशान नहीं है। ऐसा अनुमान है कि इससे लोगों के सुंदर सपने चकनाचूर हो जाएंगे। दुर्भाग्यवश, लियुजियान और अन्य लोगों को यह विचार बिल्कुल भी नहीं आया। गाड़ी में बैठे शिक्षित युवा जोश से भरे हुए थे और अपनी जवानी सीमा के निर्माण के लिए समर्पित करने को तैयार थे। जिया जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपने सिर को स्कार्फ से ढक लिया और लियुजियान को धक्का दिया। लियु कियान जिनके पास स्कार्फ नहीं था, इसलिए वह अपना चेहरा भी नहीं ढक सका। स्कार्फ पहन लो, लियुजियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और जब उसने मुड़कर जिया जी को देखा, जिसका चेहरा कसकर दुपट्टे से ढका हुआ था, तो वह लगभग हंस पड़ी। भले ही वो नकाबपोश हीरो है, कम से कम उसकी आंखें तो खुली हैं, लेकिन इस आदमी ने तो सिर से गर्दन तक पूरा दुपट्टा कसकर बांध रखा है। जिया जी, स्कार्फ पहनने का ये तरीका नहीं है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वह इतनी दयालु भी थी कि उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। आखिरकार लियुजियान अब जिया जी को अपना दोस्त मानती थी और उसने जिया जी से ऐसा करने की उम्मीद नहीं की थी। सच कहूँ तो अगर वह जिया जी को अपना दोस्त नहीं मानती तो उसे शर्माती। जिया जी ने अपना सिर हिलाया। बेहतर होगा कि आप भी मेरी तरह अपना स्कार्फ बांधें। जिया जी ने भी धीमी आवाज में बात की, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह जियांग यिफान का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। उन्हें यहाँ के माहौल का जरा भी अंदाजा नहीं है। हवा चलते ही रेत और पत्थर इधर उधर उड़ जाते हैं और वे 2 किलो रेत निगल सकते हैं। यदि आप स्थानीय नहीं हैं तो आप यहाँ की जलवायु परिस्थितियों से परिचित नहीं होंगे और आपको ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ घूंघट रखना एक आवश्यक वस्तु है। लेकिन दुर्भाग्य से जियांग यिफान फिर भी पीछे मुड़ा। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि वे दोनों धीमी आवाज में बात कर रहे थे। जियांग यिफान की आंखों में कुछ समझदारी दिखी। झू झेंगान सचमुच अपने बेटे की रक्षा कर रहा था। ग्रीष्म संक्रांति पर स्कार्फ इस तरह नहीं पहना जाता। इसके अलावा इतने ठंडे मौसम में स्कार्फ पहनना उचित नहीं है। हमें अब ऊनी स्कार्फ पहनना चाहिए। भगवान जानता है कि अब तापमान इस स्तर तक गिर गया है, यहाँ तक कि जब आप बात करते हैं तो आप जो सांस छोड़ते हैं वह भी सफ़ेद होती है। जिया जी ने जो कहना चाहा उसे वापस निगल लिया। ऐसा मत सोचिए कि सर्दियों में रेत और पत्थर नहीं उड़ेंगे। सर्दियों में हवा फिर भी जानलेवा हो सकती है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, तेज हवा चलने लगी। जब जिया जी ने देखा कि हवा चलने लगी है तो उसने जल्दी से अपना सिर पकड़ लिया और अपना शरीर सिकोड़ लिया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। आधे घंटे बाद जब हवा का झोंका गुजर गया तो गाड़ी में बैठे सभी लोग जिया जी को घूरने लगे। लियुजियान ने मुंह में रेत भरकर थूका और फिर अपने हाथों से अपने कानों और नाक से रेत निकाली। मैं तो कसम भी नहीं खा सकता था। मुझे अंततः समझ में आ गया कि हमें सर्दियों में स्कार्फ का उपयोग क्यों करना चाहिए। उसने जल्दी से गाड़ी में सामान खंगाला, अपना दुपट्टा निकाला और उसे अपने सिर पर लपेट लिया। इस बार उसने जिया जी की नकल की और उसे सिर से पांव तक कसकर लपेट लिया। फिर उसने ऊनी दुपट्टा अपनी गर्दन के चारों ओर डाल लिया। इस समय स्कार्फ पहने हुए कोई भी व्यक्ति हिलने लगा। जिया जी ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। गाड़ी वैसे भी तेज नहीं चल रही थी और वह इन 10 घंटों से बच नहीं सकता था। बस एक झपकी ले लो। मैं 10 घंटे से अधिक समय तक अचंभित होकर चलता रहा और जब जिया जी ने अपनी आंखें खोली तो मैंने इसे सुना। जियांग यिफान की आवाज गाड़ी के सामने से आई। सब लोग बस से उतर जाओ, सब लोग बस से उतर जाओ, हम आ गए हैं। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। वह जल्दी से गाड़ी से उतर गया। इतनी देर बैठे रहने से उसके पैर सुन्न हो गए थे। पैरों को रगड़कर उन्हें तानते हुए उसने अपना छोटा सा बैग गाड़ी से उतारकर कंधों पर डाल लिया। सभी लोग दंग रह गए और उनके सामने केवल मिट्टी का ढेर था जो नमक और क्षार के फूलों की परत से ढका हुआ था। इस घर के अलावा किसी और चीज का कोई निशान नहीं है। कॉमरेड जियांग, हमारा छात्रावास कहाँ है? जियांग यिफान मुस्कुराया और अपने पीछे मिट्टी के ढेर की ओर इशारा किया। ये डगआउट है और अब से ये तुम्हारा शयनगृह होगा। एक डगआउट में 2 लोग रह सकते हैं। आप रहने की जगह को उन लोगों के बीच बांट सकते हैं जिनके साथ आप रहना चाहते हैं। ये सही है, एक व्यक्ति पूरे डगआउट में नहीं रह सकता। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं, यहाँ रहने की जगह सीमित है और यही स्थिति है। यदि सभी लोग जल्दी से काम कर लें तो हम साफ सफाई कर सकते हैं और बाद में खाने के लिए कैफेटेरिया में जा सकते हैं। आज रात हम कैफेटेरिया में सभी को भोजन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अब से हम सभी को भोजन उपलब्ध नहीं कराएंगे, इसलिए आपको अपना भोजन स्वयं पकाना होगा। ये कहने के तुरंत बाद जियांग यिफान वहां से चले गए। जाहिर है कि उन्होंने उन्हें विरोध करने या खंडन करने का कोई मौका नहीं दिया। जब सभी लोग इन छोटे टीलों के सामने खड़े हुए तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह वही घर है जिसमें वे आज रात जाने वाले हैं, एक खोदा हुआ गड्ढा। सबके चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो उन पर बिजली गिर गई हो। जिया जी ने अपने होंठ भींच लिए। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। तथाकथित डगआउट सीमांत क्षेत्र में सबसे बुनियादी प्रकार का घर है। जाहिर है, जिस ब्रिगेड से वे आए थे वह कृषि सुधार क्षेत्र में एक नव विकसित खेत होना चाहिए। यदि यह पूर्व निर्माण कोर का फार्म होता तो संभवतः इसमें अडोब घर बनाए जा सकते थे। इस स्थान को भूमि सुधार के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, इसलिए लोग अभी भी खोदे गए गड्ढों में रहते हैं। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि दिबोजी कैसा दिखता है। तथाकथित दिबोजी एक बहुत ही साधारण घर होता है और इसकी समग्र शैली उत्तर में किसी सब्जी के तहखाने जैसी होती है। आजकल हालात मुश्किल हैं और जहां भी जाओ सामान कम ही मिलता है। अगर आप मिट्टी की ईंटों से घर बनाना चाहते हैं तो ईंटें बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी। लेकिन डगआउट की कोई आवश्यकता नहीं है। ये स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो जाता है, कच्चे माल की बचत करता है तथा इसमें बहुत कम जनशक्ति की आवश्यकता होती है। दरअसल डगआउट के कई फायदे हैं। ये आपको सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रखते हैं। इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री किफायती है और इसे जोड़ना भी बहुत आसान है। सीधे शब्दों में कहें तो इसे दो शब्दों में कहा जा सकता है, पैसे की बचत। जियाजी ने सबसे नजदीकी डगआउट ढूंढा और सीधे अंदर चला गया। जियाजी को देखकर वह अंदर चला गया। लियू जियान ने कुछ नहीं कहा, अपनी लटकती हुई बांह को ऊपर उठाया और एक हाथ से अपना सूटकेस पकड़ लिया। तो मैं उसके पीछे चला गया। लियू कियानजिन ने उसकी ओर देखा और अपना बैग हाथ में लेकर उसके पीछे चल दिया। किसने सोचा होगा कि जियाजी पलट कर वापस आ गया, अगले दरवाजे पर बने डगआउट की ओर इशारा किया और लियू कियानजिन को बताया, लियू कियानजिन आप मेरे बगल में रह सकते हैं। लियू कियानजिन ने तुरंत आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर खुजलाया और सिर हिलाया। जियो जिया, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। वह वास्तव में बगल के डगआउट में रेंग कर चला गया। इसके बाद जियाजी ने मुड़कर लियू जियान को उसका सूटकेस डगआउट में ले जाने में मदद की। लियू जियान अपने चेहरे पर घृणा का भाव लिए अपनी नाक पर पंखा झलते हुए यहां आए। जब मैंने अंदर की स्थिति देखी तो मैं लगभग अचंभित रह गया। जियाजी, हमें ऐसे घर में कौन रहने देगा? क्या इसे घर कहते हैं? इसे सुअरबाड़ा कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे हमें सुअरों की तरह बाड़े में रख रहे हैं। जाहिर है, लियू जियान जो एक छोटे कैडर परिवार से थे ने ऐसा घर कभी नहीं देखा था। डगआउट वास्तव में काफी चौड़ा है और डगआउट की ऊंचाई स्वीकार्य है, लगभग 1.8 मीटर। अन्यथा उन्हें अंदर जाते समय झुकना पड़ता। ये बिस्तर जमीन से लगभग 30 सेमी ऊपर एक मिट्टी का मंच होता है जिस पर पुआल की एक परत होती है। लेकिन कुल मिलाकर ये डगआउट उत्तर और दक्षिण की ओर है और एकमात्र साधारण दरवाजा अंदर की ओर खुलता है। लकड़ी के कई टुकड़ों को एक साथ कीलों से ठोंक कर उन्हें टाट के टुकड़ों से ढक दिया गया। घर में एक मोटा चिनार का पेड़ है जो पूरे घर के लिए क्रॉसबीम का काम करता है। चिनार के पेड़ को केंद्र में रखकर बीम दोनों ओर फैले हुए हैं तथा हर कुछ दर्जन सेंटीमीटर पर एक बांह जितनी मोटी शहतीरें हैं, बिल्कुल मानव पसलियों की तरह। सबसे पहले इन शहतीरों पर घास की एक परत बिछाई जाती है और फिर घास के ऊपर सरकंडों से बनी एक चटाई बिछाई जाती है। बेशक चटाई के ऊपर चटाई की एक और परत बिछाई जाएगी, एक तरफ पानी से बचाने के लिए और दूसरी तरफ ठंड से बचाने के लिए। अंत में ऊपरी सतह को मिट्टी से बंद कर दें। इस प्रकार के घर में छत के बीच में लगभग 50 सेमी की एक छोटी खिड़की होती है। आमतौर पर कोई भी विशेष खिड़की का फ्रेम नहीं बनाता है, वह सिर्फ छेद पर दबाया गया कांच का एक टुकड़ा होता है। जब सूरज उगता है तो वह छत पर लगी खिड़की से अंदर आता है जिससे धुंधले गड्ढे में रोशनी आ जाती है। यह आम घरों से बिल्कुल अलग है। यह न सिर्फ धुंधला और सादा दिखता है बल्कि लोगों को उदास भी महसूस कराता है। दरवाजे के बगल में एक स्टोव है और स्टोव 2 मीटर ऊंची अडोब दीवार से जुड़ा हुआ है जिसे अग्नि दीवार कहा जाता है। यहाँ कोई भी कांग नहीं बनाता। सर्दियों में सूखी शाखाओं और पत्तियों या टहनियों और पुआल को भट्टी में जलाया जाता है। लौ चूल्हे की चिमनी से अग्नि दीवार की चिमनी तक ऊष्मा स्थानांतरित करती है। यह अपरिष्कृत विधि आपको गर्म रखती है तथा हवा और ठंड से बचाती है। जियाजी ने आग की दीवार को हाथ से छुआ। वह बर्फ जैसी ठंडी थी। जाहिर था कि उन्हें ईंधन खुद ही ढूंढना होगा। आज रात तो बिल्कुल नहीं, लेकिन जाहिर है इन शिक्षित युवाओं का स्वागत करने के लिए मिट्टी के चबूतरे के बगल वाली दीवार पर तेल के दीपक रखने के लिए एक खांचा खोदा गया था। एक कांच की बोतल आधी मिट्टी के तेल से भरी हुई थी जिसका उपयोग उन्हें रात में रोशनी प्रदान करने के लिए किया जाता था। यहाँ तो बिजली की रोशनी भी नहीं है। लियू जियान चिल्लाए और उसने देखा कि एक चूहा प्लेटफॉर्म पर पड़े भूसे के ढेर से रेंगता हुआ बाहर आ रहा है। उसके जूते के किनारे से टकराता हुआ सीधे दरवाजे से बाहर भाग रहा है। आह, चूहा! जियाजी ने एक नजर डाली और शांति से अपने हाथ में रखे बैग को, साथ ही लियू जियान के सूटकेस और बैग को पुआल से ढके फर्श पर फेंक दिया, फिर बाहर चले गए। लियू जियान ये देखकर डर गई और अपनी बाहें नीचे लटकाए जियाजी के पीछे चली गई। जियाजी, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा इंतजार करो, मुझे पीछे मत छोड़ो, मैं यहाँ अकेले रहने की हिम्मत नहीं कर सकता। भगवान जानता है कि जब लियू जियान ने खुद को चूहे के साथ एक ही कमरे में रहने के बारे में सोचा, तो उसने चाहा कि काश उसके दो पंख उगाते और वह वापस उड़ जाती। जब हम पहली बार यहाँ पहुंचे तो हर कोई सीमा निर्माण का समर्थन करने तथा आकाश, पृथ्वी और प्रकृति के खिलाफ लड़ने के लिए उत्साहित था। मातृभूमि के निर्माण के लिए अपनी जवानी समर्पित करते हुए किसने सोचा था कि अपनी जवानी चूहों के साथ समर्पित करनी पड़ेगी। मेरे पीछे मत आना, मैं कुछ ढूंढने जा रहा हूँ। हमें जल्दी से घर साफ करना है, वरना अंधेरा होने तक हम सो नहीं पाएंगे। दोनों महिला साथी बाहर आई और अन्य लोग भी अपने डगआउट से बाहर आ गए। इसकी मुख्य वजह यह थी कि किसी ने भी यहाँ के रहने के हालात ऐसे होने की उम्मीद नहीं की थी। सब शहर से थे और अगर कोई परिवार गरीब भी था तो कम से कम उसके पास रहने के लिए कच्चा मकान तो था। ये घर ऐसा है जिसे आपने पहले कभी न देखा होगा और न ही सुना होगा। कई लोगों की आंखें लाल हो गई थीं और वे रोने वाले थे। हम वापस जाना चाहते हैं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। क्या ये लोगों के लिए जगह है? हम ऐसे घर में कैसे रह सकते हैं? बहुत से लोग धार्मिक क्रोध से भर गए और जियाजी ने इन लोगों पर नजर डाली। आज कोई भी उनकी परवाह नहीं करेगा। जब शिक्षित युवाओं ने खराब हालात देखे तो वे तुरंत हमारे खिलाफ हो गए। अगर वे अब वापस जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते। अकेले सैकड़ों मील चलना नामुमकिन था और रास्ते में भेड़िए भी होंगे। स्पष्ट शब्दों में कहें तो उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने और इन शिक्षित युवाओं को बाहर जाने से रोकने के लिए उन्हें जानबूझकर यहां छोड़ दिया गया था। उसने अपने पिछले जीवन में इस तरह की चालें देखी थी, इसलिए कम से कम आज कोई उन पर ध्यान नहीं देगा। जियाजी डगआउट के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर दूर तक देखने लगा। उसे दूर एक बड़ा सा सरकंडे का दलदल दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि लियू कियानजिन उसके बगल में खड़ा है। लियू जियान, तुम घर पर रहो। लियू कियानजिन और मैं कुछ जलाओ लकड़ी लेने जाएंगे। हमें रात में अग्नि दीवार जलानी होगी, अन्यथा हम आज रात जम जाएंगे। अगर आप इसे साफ कर सकते हैं तो डगआउट साफ करें, अगर नहीं तो मेरे वापस आने का इंतजार करें। जियाजी को उम्मीद नहीं थी कि लियू जियान, जो आधी अपाहिज थी, कोई मदद करेगी। और तो और, वह एक जवान औरत थी, उसका हाथ गोफन में बंधा था और वह किसी घायल व्यक्ति का सहारा भी नहीं ले सकती थी। ये सुनकर लियू जियान चिंतित हो गई। क्या मैं आपके साथ नहीं आ सकता? मैं जलाओ लकड़ी इकट्ठा कर सकता हूँ, मेरा एक हाथ अभी भी काम करता है। मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, यहाँ चूहे हैं। जियाजी ने दूर स्थित सरकंडों की ओर देखा और उसे धीरे से उत्तर दिया। यह एक बंजर भूमि है जहाँ हर जगह भेड़िए हैं। क्या तुम सचमुच जाना चाहते हो? सरकंडे का दलदल बहुत खतरनाक है। मैंने लियू कियानजिन को अपने साथ चलने के लिए कहा क्योंकि वह बड़ा और ताकतवर है। वह दो डंडों से दो भेड़ियों को भगा सकता है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तुम भेड़ियों को खाना खिलाओगे या चूहों को? खुद ही हिसाब लगा लो। उसके पास इस नाजुक युवती की रक्षा करने का समय नहीं था और इसके अलावा उनका रिश्ता इतना घनिष्ठ नहीं था कि वह उसकी रक्षा के लिए अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल सके। ये सुनते ही लियू जियान तुरंत उदास हो गई। और भेड़िए? जैसे ही उसने ये प्रश्न पूछना समाप्त किया, उसे दूर से भेड़िए की चीख सुनाई दी, यद्यपि वह बहुत दूर लग रही थी। लेकिन इस चिल्लाहट ने निश्चित रूप से उन युवा बुद्धिजीवियों को, जो अभी भी बकवास कर रहे थे, तुरंत चुप करा दिया। पीले चेहरे वाले कई लोग अपने डगआउट में घुस गए, जो कम से कम भेड़ियों से सुरक्षा प्रदान कर सकते थे। जियाजी ने बिना एक शब्द कहे लियू कियानजिन की ओर हाथ हिलाया। आगे बढ़ो, मेरे पीछे आओ। लियू कियानजिन ने जियाजी का पीछा किया और स्पष्ट रूप से इस बात की परवाह नहीं की कि वह भेड़िया था या नहीं। लियू जियान ने डगआउट में छलांग लगा दी, ये जानते हुए कि उसमें चूहे हैं। लेकिन भेड़ियों की तुलना में वह अचानक इतनी डरी हुई नहीं थी। जियाजी और लियू कियानजिन द्वारा जलाओ लकड़ी खोजने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के बारे में सोचते हुए वह चुपचाप खड़े होकर नहीं देख सकता था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि मैं अपनी आस्तीन चढ़ाकर अपनी घृणा को दबाते हुए डगआउट की सफाई शुरू कर दूं। दरवाजे के पीछे एक झाड़ू रखी थी जिससे वे छज्जे पर लगे सारे मकड़ी के जाले साफ कर सकें। दीवार को फिर से साफ करें। वैसे मैंने झाड़ू ली और प्लेटफॉर्म पर पड़े पुआल को थपथपाया। सौभाग्यवश कोई चूहा बाहर नहीं आया। इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस स्ट्रॉ पर कैसे सोएं। लेकिन कान लगाने पर भी उसे बाहर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसने समय देखा तो 2 घंटे बीत चुके थे और उन दोनों का कोई पता नहीं था। क्या ये संभव है कि उसने सचमुच भेड़ियों को खाना खिलाया हो? तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। लियू जियान, मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। जियाजी की आवाज़ सुनते ही लियू जियान तेजी से दौड़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि जियाजी एक सरकंडे की चटाई पकड़े अंदर आ रही है। उसके पीछे जो व्यक्ति चल रहा था वह वास्तव में झोउ झेंगान था। झोउ झेंगान ने खाकी वर्दी और सरकंडे की पट्टियों से बनी टोपी पहन रखी थी। ठीक है, सरकंडे की चटाइयां तुम्हें दे दी गई हैं, तुम आज आराम कर सकते हो। मैं बाद में किसी को भेजकर तुम्हें डिनर के लिए कैफेटेरिया में बुला लूंगा। झोउ झेंगान को उम्मीद नहीं थी कि जब ग्रीष्म संक्रांति आएगी तो वह यहां डगआउट को देखने में असमर्थ हो जाएगा। वह दो लोगों को विशेष रूप से दो चटाइयां बुनने के लिए सरकंडे के दलदल में लेकर आए थे और 3 या 4 घंटे पहले ही वहां पहुंच गए। इसलिए जब जिया जी लियू कियानजिन को यहां लेकर आए तो उनकी मुलाकात झोउ झेंगान से हुई। ये सुनकर कि वे जलाओ लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, झोउ झेंगान बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें उनकी सामान्य जगह पर ले गया। यहाँ ज्यादा सुरक्षित था क्योंकि बहुत सारे सरकंडे पहले ही काट दिए गए थे। यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है, आज भले ही इसकी जरूरत न हो लेकिन भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाजी इतनी जल्दी ढल जाएगा। उसने वास्तव में लियू कियानजिन को अकेले लाने और सरकंडे के दलदल तक भागने का साहस किया। जियाजी, तुम बहुत बहादुर हो, क्या तुम्हें यहाँ भेड़ियों से सामना होने का डर नहीं है? सूखे पेड़ों को काटने में उनकी मदद करते हुए झोउ झेंगान ने गंभीरता से पूछा। भले ही हमारा सामना भेड़ियों से हो जाए, फिर भी हमें लकड़ी काटनी होगी और वापस लौटना होगा। अगर आज रात बुखार ना भी आए तो कल आएगा ही, देर सवेर आएगा ही। ग्रीष्म संक्रांति तेजी से आगे बढ़ती है। हालांकि उसके हाथ में केवल एक कुल्हाड़ी थी लेकिन वह वास्तव में झोउ झेंगान से भी तेज था और उसने ये काम बहुत कुशलता से किया। अपने सामने खड़े सूखे पेड़ को काट डाला और इसे पीठ पर ले जाने के लिए उपयुक्त लंबाई में काटा गया था। उसने भांग की रस्सी जमीन पर रखी और उन सूखी शाखाओं को बांध दिया जिन्हें उसने और झोउ झेंगान ने काटा था। जैसे ही जियाजी अपनी पीठ पर जलाओ लकड़ी ले जाने वाला था, झोउ झेंगान ने उसे छीन लिया। तुम एक महिला एक पुरुष से अधिक घमंडी दिखती हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप भेड़ियों से नहीं डरते। जियाजी को कुल्हाड़ी के साथ दो बार नृत्य करते हुए देखकर झोउ झेंगान को यकीन हो गया कि जियाजी ने शायद पहले भी कुछ बार अभ्यास किया होगा। जियाजी ने जब झोउ झेंगान को अपनी पीठ पर लकड़ी के तीनों बंडल गिराते देखा तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। अगर झोउ झेंगान एक भेड़िए से भी अधिक निर्दयी नहीं है तो वह यहाँ कैसे जीवित रह सकता है? मैंने यहाँ आने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और यहाँ की स्थिति के बारे में भी जाना, इसलिए मैंने पहले से थोड़ा अभ्यास किया। झोउ झेंगान ने आह भरी। उसने पहली बार एक ऐसी लड़की देखी थी जो थोड़ी पतली लग रही थी लेकिन उसमें इतनी जबरदस्त ऊर्जा थी। मैं जहां भी जाता हूं वहां बहुत जल्दी अनुकूलित हो जाता हूं। चलो चलें, ये चटाई तुम्हारे लिए बनी है, एक तुम्हारे लिए है और एक लियू कियानजिन के लिए। जियाजी ने ये देखा और उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी जिससे झोउ झेंगान को लगा जैसे उसने कोई महान काम किया हो। उसके हाथ में जो था वह कोई चटाई नहीं थी बल्कि चावल या सुअर का मांस जैसा कुछ था। कॉमरेड झोउ झेंगान, मैं सचमुच आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह ऐसी चीज है जिसकी हमें अभी सचमुच जरूरत है। मैं सोच रहा था कि कल तक इंतजार करके यहाँ आकर सरकंडे काटूंगा और फिर वापस जाकर दो चटाइयां बुनूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सचमुच वही सोचेंगे जो हम सोचते हैं और वही चिंता करेंगे जिसकी हमें चिंता है। मिट्टी के चबूतरे को पुआल से ढक दिया जाता है और निश्चित रूप से इसे चटाई से भी ढकना पड़ता है, अन्यथा चूहे और कीड़े ऊपर चढ़ना चाहेंगे। क्या आप चटाई भी बुन सकते हैं? बेशक मैं बुनाई कर सकता हूँ। अगर मैं बुनाई नहीं कर सकता तो मैं सरकंडे क्यों काटूंगा? इस प्रश्नोत्तर के दौरान वे डगआउट में वापस आ गए और पिछला दृश्य घटित हुआ। झोउ झेंगान द्वारा लाई गई चटाई को देखकर लियू जियान ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। ये किस लिए है? झोउ झेंगान ने उनके लिए पुआल के ढेर पर चटाई बिछाए और उसे थपथपाया। कॉमरेड जियाजी, मैंने देखा कि आपके पास रजाई या गद्दा नहीं है और आप जल्द ही अपना खाना खत्म कर लेंगे। मेरे साथ आओ, मेरे पास वहां बिस्तर का एक अतिरिक्त सेट है, तुम इसे ले जा सकते हो। झोउ झेंगान बहुत सावधान था और एक नज़र में बता सकता था कि जिया जेड के पास केवल एक छोटा सा बैग था, कोई बिस्तर नहीं था। आजकल आप चाहे कुछ भी करने के लिए बाहर जाते हो आप अपना सामान हमेशा साथ लेकर जाते हैं। वहां बिक्री के लिए कुछ भी तैयार नहीं था और यदि आप कोई सामान नहीं लाए तो आपको ठंड सहनी पड़ेगी। जियाजी ने ये सुना तभी उसे एहसास हुआ कि वह अन्य चीज़ों के बारे में सोच रही थी और बिस्तर के बारे में भूल गई थी। लेकिन मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा, इतनी ठंड में अगर आप रात में खुद को कंबल से नहीं ढकेंगे तो ठंड से मर सकते हैं। वैसे भी वह झोउ झेंगान को पैसे दे सकती थी और उसका फायदा नहीं उठा सकती थी। धन्यवाद झोउ झेंगान, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। झोउ झेंगान पहले तो नहीं कहना चाहता था लेकिन लियू जियान को देखने के बाद उसने अपने शब्द वापस निगल लिए। यदि आपको कुछ कहना है तो थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, उन्होंने स्वयं जियाजी से कहा। झोउ झेंगान मदद करने के बाद जाने ही वाला था लेकिन जैसे ही वह डगआउट से बाहर निकला उसने देखा कि जियाजी और उसके दोस्तों के डगआउट के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। झोउ झेंगान को देखकर कोई दौड़कर आया। कैप्टन झोउ, आपको सभी के साथ समान व्यवहार करना होगा, आप यहाँ आकर इतने पक्षपाती कैसे हो सकते हैं? केवल महिला साथियों की परवाह करते हैं और हमारी ओर ध्यान नहीं देते। कॉमरेड जो, हम भी समलैंगिक हैं। आप सिर्फ जियाजी और बाकियों की ही मदद क्यों करते हैं और हमें नजरअंदाज करते हैं? आप बहुत पक्षपाती हैं। बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। उस चटाई को देखकर किसे जलन नहीं होगी? ये सुनकर कि बाहर भेड़िए हैं, स्वाभाविक रूप से उन्होंने सरकंडे के दलदल में जाने या बाहर रहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वह एक गुफा में छिपा हुआ था। मिट्टी के चबूतरे पर केवल पुआल की एक परत थी और वे उस पर रजाई डालने को तैयार नहीं थे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस पर सोना नम और गीला होगा, विशेषकर तब जब कंग जला नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि रात कैसी होगी। बहुत से लोगों ने अपनी नजरें मैट पर टिका दी। जो झेंगान ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेशक ये व्यंग्यात्मक मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट मुस्कान थी। तुम्हें चटाई चाहिए, ये भी ठीक है। सरकंडों के दलदल में जाओ और कुछ सरकंडे काट लाओ, मैं तुम्हें उन्हें बुनना सिखाऊंगा। जो झेंगान इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो इस तरह से कार्य करते थे जैसे कि यह उनका अधिकार हो। शहर में वे शिक्षित युवा थे, लेकिन यहाँ उन्हें अन्य लोगों की तरह ही वातावरण के अनुकूल ढलना पड़ा और कोई भी उन्हें लाड़ प्यार नहीं देता था, विशेषकर जो झेंगान जैसे लोग जिन्हें विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है हमेशा कठिन वातावरण को सहन करने में सक्षम। वे अपने लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों के लिए उन्हें नैतिक रूप से ब्लैकमेल करना बिल्कुल असंभव है। जब सब ने ये सुना तो वे तुरंत चौंक गए। कैप्टन जो, यह अनुचित है ना? यह अनुचित क्यों है? जियाजी में लियू जियान, लियू कियानजिन और दूसरे लोग क्यों हैं? बस उन्हें दो चटाई दे दो और जब हमारी बारी आए तो हम उन्हें बना लें। ये बहुत भेदभावपूर्ण है, किसी ने धीरे से बुदबुदाया। ये दोनों चटाइयां भी मैंने और मेरी टीम ने बनाई हैं। कॉमरेड जियाजी मेरे दोस्त हैं, लियू जियान और लियू कियानजिन भी मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैंने विशेष रूप से 4 घंटे तक उनकी बुनाई में मदद की। उसके बाद मैंने अंततः एक चटाई बना ली। अगर आप चाहें तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसे बनाना सिखा सकता हूँ। सामग्री तो पहले से ही उपलब्ध है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं, हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, मैं मुफ्त में चटाई बुनने में आपकी मदद क्यों करूँ? इन शिक्षित युवाओं को यह उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी स्पष्टता से बात कह देगा और उनके चेहरे तुरंत लाल हो गए। कैप्टन जो, आपका ऐसा कहना अनुचित है। हम सब आपके साथी हैं, हमें एकजुट होकर अपनी मातृभूमि के विकास में योगदान देना चाहिए। हम यहाँ अपना देश बनाने आए हैं, आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा हम चटाई बुनना नहीं जानते, आप और आपके दोनों साथी चटाई बुन सकते हैं और आपने 2 चटाई बुनने में हमारी मदद की। इतनी छोटी सी चीज में हमारी मदद न करना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आप हमारी 6th ब्रिगेड के कैप्टन हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आपको हमारा दिल दुखने का डर नहीं होगा? हाँ, हमारे कृषि सुधार क्षेत्र में हर किसी को अपनी मेहनत से कुछ न कुछ कमाना पड़ता है। दूसरों का फायदा उठाना या मुफ्त में कुछ पाना बिल्कुल नामुमकिन है। आप यहाँ मातृभूमि का निर्माण करने आए हैं, अपनी जवानी मुझे समर्पित करने नहीं। तो अपना ख्याल रखना, यही बुनियादी नियम है। मैं यहाँ तुम्हारा पिता या माँ नहीं हूँ, मुझे आपकी देखभाल करने का कोई अधिकार या दायित्व नहीं है, मैं केवल आपका प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार हूँ। जो झेंगान की बात सुनकर हर कोई अवाक रह गया। कैप्टन जो, क्या आप हम शिक्षित युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? हम यहाँ सीमा निर्माण में मदद करने आए थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम घर जाना चाहते हैं। हाँ, हम घर जाना चाहते हैं, कई लोग हंगामा करने लगे। इसकी वजह चटाई नहीं बल्कि घर जाना है, इस गुफा में कौन रह सकता है? तभी जो झेंगान को आसमान में गोलियों की बौछार करते देखा गया। टकराना, अभी जो अराजक दृश्य था वह पल भर में शांत हो गया। वे पढ़े लिखे नौजवान थे और उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। जो झेंगान ने गंभीरता से उनकी ओर देखा, उन आंखों की ठंडी रोशनी ने एक पल के लिए सभी को थोड़ा डरा दिया। कई लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया। अगर आप वापस जाना चाहें तो आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको लेने की है, छोड़ने की नहीं। अगर आप वापस जाना चाहें तो आपको खुद ही पैदल चलना होगा, लेकिन ये स्थान उस स्टेशन से कम 300 मील दूर है जहां से आप आए हैं। जैसे ही जो झेंगान ने बोलना समाप्त किया, दूर से लगातार भेड़ियों की चीखने की आवाज आने लगी। हर कोई इसका निहितार्थ समझ गया। आपको यहाँ के नियमों का पालन करना होगा, अगर आप नहीं रहना चाहते तो आप खुद ही रुक सकते हैं, कोई आपकी सेवा नहीं करेगा। आप यहाँ सीमा बनाने आए हैं, न कि कोई युवा स्वामी या युवती बनने। जो झेंगान ने मुड़कर सबको स्तब्ध छोड़कर चले गए। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जो चालें उन्होंने पहले अपनाई थी वे कैप्टन जो के सामने पूरी तरह से कमजोर साबित होंगी, जिन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। जियाजी और लियू जियान ने सबकी ओर देखा। ये वास्तविकता है, एक क्रूर वास्तविकता जो गोबी रेगिस्तान, सूर्यास्त, बाद के चमक और रोमांटिक जीवन से पूरी तरह से अलग है, जिसके बारे में ये शिक्षित युवा कल्पना करते हैं। ये तो बस शुरुआत है और इनमें से कुछ को अनुकूलन की आवश्यकता है। वे दोनों अपनी गुफा में लौट आए और काम में लग गए। चटाई के कारण कमरा अचानक जीवंत लगने लगा। चटाई साफ करें, लियू ज़ियान को सूटकेस से उसका बिस्तर निकालने में मदद करें। ये मिट्टी का चबूतरा काफी विशाल है और वास्तव में इस पर 3 या 4 लोग आसानी से सो सकते हैं। हालांकि आजकल एक डगआउट में सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि हवा का संचार ठीक से नहीं होता और अगर वहां बहुत ज्यादा लोग रहते हैं तो घुटन होना स्वाभाविक है। ज़ियाज़ी ने अपनी चीजें मिट्टी के मंच के सामने वाले मंच पर रख दी। आजकल बेडसाइड टेबल जैसी कोई चीज नहीं होती थी, बस एक मिट्टी का चबूतरा होता था और सामने की दीवार में 2 चौकोर छेद खोदे जाते थे। इस तरह आप इसमें अपनी चीजें रख सकते हैं। हाँ, योग्य लोग लकड़ी से कुछ छोटे छोटे बक्से बनाकर भी इस जगह में रख सकते हैं। बेशक यह उन लोगों को संदर्भित करता है जिनमें योग्यता है। अधिकांश लोग मेज पर कोई नाजुक चीज रख देते हैं, शायद उसके नीचे कपड़े का एक टुकड़ा रख देते हैं। इसके अलावा ये ग्रिड बहुत ही नाजुक ढंग से बनाया गया है, जिसे 2 परतों में विभाजित किया गया है। यदि आप इसमें एक बॉक्स रखना चाहते हैं तो बस अडोब की मध्य परत को हटा दें। यदि आप इसमें कोई बॉक्स नहीं रखते हैं तो इसे सीधे भंडारण रैक में बदला जा सकता है। लियू ज़ियान ने भी एक हाथ से अपनी चीजें व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। वह हर जगह ज़ियाज़ी से मदद नहीं मांग सकती थी। ज़ियाज़ी ने अपना घर साफ करने के बाद अगले दरवाजे पर चला गया। लियू क्यानजिन के डगआउट में अब वह अकेला नहीं था, वहां एक पतला और छोटा लड़का भी था। वह युवा दिखता है, मानो वह वयस्कता तक नहीं पहुंचा है। जब ज़ियाज़ी ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया तो लड़के ने बस अपना सिर उठाया और एक नजर देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि लियू क्यानजिन ज़ियाज़ी को देखकर बहुत खुश था। जियो ज़िया, तुम यहाँ क्यों हो? मैं ये देखने आया था कि क्या आपने चटाई बिछा दी है और बिस्तर लगा दिया है। लियू क्यानजिन ने जल्दी से अपने बिस्तर की ओर इशारा किया, मानो क्षमा मांग रहा हो। देखो, चटाई तो पहले से ही बिछी हुई है, मेरा बिस्तर भी बिछा हुआ है, मैं सब कुछ खुद ही संभाल सकता हूँ। मैं बहुत बढ़िया हूँ, है ना? एक बच्चे की तरह जो कैंडी मांग रहा हो। दुबले पतले लड़के ने अपना सिर उठाया और लियू क्यानजिन की ओर देखा। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से तिरस्कार का भाव दिखाई दे रहा था। मुझे लगता है वह मन ही मन मुझे मूर्ख कह रहा है। लियू क्यानजिन, तुम कमाल हो। अब जब तुमने सामान पैक कर लिया है तो अपना सामान एक तरफ रख दो, अपना लंच बॉक्स ले लो और चलो खाना खाने चलते हैं। जैसे ही लियू क्यानजिन ने खाने के बारे में सुना, वह तुरंत दिलचस्पी लेने लगा और जल्दी से अपने बैग से लंच बॉक्स निकाल लिया। ग्रीष्म संक्रांति के ठीक पीछे 3 लोग कैफेटेरिया में आए। उन्हें कड़वी मुस्कान देनी पड़ी, क्योंकि उन्हें लगा कि कैफेटेरिया उनके छात्रावास के ठीक बगल में है। लेकिन जब कैफेटेरिया के साथी उन्हें खाने के लिए बुलाने आए तो उन्हें एहसास हुआ कि कैफेटेरिया वह नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, बल्कि उसके सामने एक डगआउट बनाया गया था। इसके बजाय आपको मिट्टी का घर देखने के लिए 1 मील चलना पड़ेगा। यहाँ कच्ची मिट्टी के घरों की 3-4 पंक्तियाँ हैं, कैंटीन उनमें से एक है। बाकी घरों का इस्तेमाल दफ्तरों के तौर पर किया जाना चाहिए। जब मैं नजदीक पहुंचा तो मुझे दरवाजे पर लटका हुआ बोर्ड दिखाई दिया। 6ठी बटालियन का मुख्यालय। पीछे की ओर एक कार्यालय क्षेत्र और एक आवास क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन यह वह स्थान होना चाहिए जहां विशेष कार्मिक तैनात हों तथा तकनीकी कार्मिक यहीं रहें। उदाहरण के लिए डॉक्टर, जल विज्ञान टीम के सदस्य और अन्वेषण टीम के सदस्य। आप लोगों के पहने हुए कपड़ों को देखकर ही बता सकते हैं कि वे कब घर से बाहर आते हैं। लेकिन इस समय किसी को इसकी परवाह नहीं है। असली बात तो कैफेटेरिया में खाना है। जब वे तीनों अंदर आए तो उन्होंने देखा कि उनके साथ आए कुछ शिक्षित युवक जल्दी ही आ गए थे। कुछ लोग भोजन के लिए कतार में खड़े थे, जबकि अन्य लोग पहले ही अपना भोजन प्राप्त कर चुके थे और मेज पर बैठ गए थे। शायद इसलिए कि जो झेंगान ज़ियाज़ी और अन्य 3 लोगों के साथ विशेष व्यवहार करता है, अन्य लोगों ने अब अपने और उसके बीच एक स्पष्ट रेखा खींच ली है। ज़ियाज़ी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और सीधे लियू क्यानजिन और लियू ज़ियान को पंक्ति में खड़ा करने के लिए आगे खींच लिया। जब मैं कैफेटेरिया में शेफ के पास गया तो मैंने सफ़ेद आटे के बन और सेवई के साथ पकाई गई गर्म गोभी देखी। जब उन्होंने ये देखा तो तीनों की लार टपक पड़ी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके कैफेटेरिया में इतना अच्छा व्यवहार होगा कि वे मैदे के बन भी खा सकेंगे। सफ़ेद शेफ की टोपी पहने शेफ ने जब तीनों लोगों के हाव भाव देखे तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ज्यादा मत सोचो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ नए हो, इसलिए कप्तान ने खास तौर पर तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह आदेश दिया है। आमतौर पर हमारे पास सफ़ेद आटा नहीं होता। इसके अलावा आज सेवई के साथ पकाई गई गोभी में मांस के बड़े टुकड़े भी हैं, जो कि कप्तान का विशेष निर्देश भी है। ये सब तुम्हारी देखभाल के लिए है। कल सुबह सुबह कैप्टन तुम्हें खाना बांट देंगे। सबको राशन मिलने के बाद तुम आत्मनिर्भर हो जाओगे। हमारी कैंटीन में केवल आंतरिक कर्मचारी ही भोजन कर सकते हैं, अन्य लोगों को यहाँ भोजन करने की अनुमति नहीं है। जिया जी अभी भी विनम्र था और उसने लंच बॉक्स सौंप दिया, ये सोचकर कि भोजन में कोई भी सुधार इसके लायक था। जब वे पहली बार आए थे तब मैदे की बनी बंस नहीं थी। मुझे याद है कि वह थर्ड ब्रिगेड में गई थी। तीसरे ब्रिगेड में सफ़ेद आटे की कोई रोटी नहीं है। सबसे पहले उन्होंने उन्हें डराने के लिए ज्वार के आटे की रोटी दी। इन शिक्षित युवकों ने अचार और पत्थर जैसे कठोर ज्वार की रोटी लगभग खा ली थी और उसी रात अपना सामान लेकर भाग गए। उस समय जो हुआ था उसे सोचकर जिया जी खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। जो झेंगान कुछ हद तक मानवीय थे, कम से कम उन्होंने सभी को इस भोजन में आशा देखने की अनुमति दी। लेकिन यह वास्तविक कठिन समय की शुरुआत भी थी। गुरुजी धन्यवाद, और कैप्टन जो और सभी साथियों को भी, हम नए शिक्षित युवाओं के प्रति आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। चिंता मत कीजिए, हम कड़ी मेहनत करेंगे, इस स्थान के अनुकूल ढलेंगे, अपनी सीमा का स्वरूप बदलेंगे और अपनी मातृभूमि के लिए योगदान देंगे। इस समय नारे अवश्य लगाने चाहिए जिससे आपका पक्ष अवश्य जीतेगा। निश्चित रूप से, ये सुनकर मास्टर शेफ तुरंत खुश हो गया। युवा साथी, आपकी सोच प्रगतिशील है, केवल इसी कारण से आप एक अच्छे युवा हैं। भोजन परोसते समय बड़ा चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिला और उसने बर्तन के नीचे से एक बड़ा चम्मच भोजन उठा लिया। जैसी की उम्मीद थी, मास्टर शेफ को सबसे अच्छी तरह पता था कि मांस कहाँ छिपा है। जब चम्मच ऊपर आया तो मांस के दो तीन बड़े टुकड़े थे जिन पर चर्बी और कम वसा वाला मांस तैर रहा था। सबसे खास बात यह है कि इस चम्मच में वास्तव में आधा चम्मच टोफू है। यह एक ऐसा प्रोटीन है जो मांस के बराबर है, और मास्टर शेफ के हाथ स्पष्टतः नहीं कांप रहे थे। ये बड़ा चम्मच जियाजी के लंच बॉक्स में डाल दिया गया और उसने अपने हाथ से एक और आधा चम्मच भी डाल दिया। मास्टर शेफ मुस्कुराया और जियाजी से फुसफुसाया, ज्यादा खाओ, तुम बहुत दुबले हो, ज्यादा खाओ और ताकतवर बनो वरना तुम काम नहीं कर पाओगे। फिर उसने उस चाची से फुसफुसाकर कहा जो भाप से पके हुए बन परोस रही थी, इस लड़की को दो और स्टीम्ड बंस दो। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन के लिए केवल तीन उबले हुए बन दिए गए, लेकिन चाची ने चुपके से जियाजी को एक और दे दिया। जियाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी शुक्रिया, अंकल आप बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे यहाँ परिवार का स्नेह महसूस हो रहा है, मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगा। उसने मुस्कुराते हुए अपने पीछे खड़े लियू जियान और लियू कियानजिन से कहा, जल्दी करो तुम दोनों, मैं तुमसे मेज पर मिलूंगा। ये कदम जानबूझकर उठाया गया था। जैसे ही वे मेज पर बैठे, वे दोनों जल्दी से उसके पास आ गए। निश्चित रूप से उन दोनों के लंच बॉक्स में एक बड़ा स्टू भरा हुआ था जिसमें मांस के टुकड़े और टोफू तैर रहे थे, और लंच बॉक्स के ढक्कन पर चार उबले हुए बंस थे। अगली मेज पर बैठे युवक ने जब ये देखा तो तुरंत आपत्ति जताई। उसने अपनी चॉपस्टिक मेज पर पटक दी और खड़ा हो गया। मास्टर, यह उचित नहीं है, है ना? जब हम उन्हें खाना देते हैं तो उन्हें सब्जियों, मांस, टोफू और चार उबले हुए बंस से भरा पूरा लंच बॉक्स क्यों मिलता है, जबकि हमारे लिए केवल थोड़ा सा? युवक, क्यों? मैं आपको बताता हूं कि मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। मास्टर शेफ को डर है कि कोई नौजवान उसकी उम्र में उसकी प्रतिष्ठा को चुनौती देगा। आजकल किसी को नाराज नहीं किया जा सकता, और कैफेटेरिया में मास्टर शेफ को भी नाराज नहीं किया जा सकता। यदि कैफेटेरिया शेफ के हाथ में चम्मच थोड़ा झुका हुआ है तो आपका पेट नहीं भरेगा। इसके अलावा उन्हें अपना मासिक राशन कैंटीन से ही लेना पड़ता है। अगर कैंटीन उन्हें यहीं रोक लेगी तो शायद वे भूखे ही रह जाएंगे। जाहिर है इस युवक ने यह नहीं सोचा कि उसे किसी भी हालत में झुकना चाहिए, बल्कि उसने सोचा कि यह नौकरशाही है। आप रसोई में माहिर शेफ हैं, फिर भी आप दूसरों को धमकाते हैं। इसे अपनी ताकत का फायदा उठाकर दूसरों को धमकाना कहते हैं। इसे निजी फायदे के लिए अपनी ताकत का दुरुपयोग करना कहते हैं। जियाजी अपने सामने आक्रोशित युवा बुद्धिजीवियों के समूह को देखकर खड़ा भी नहीं हुआ। मैंने अवाक होकर अपना सिर हिलाया, मैं अभी भी बहुत छोटी थी। निजी लाभ के लिए सत्ता का उपयोग, उफ, तुम्हारी ये टोपी तो बहुत बड़ी है। निजी फायदे के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने का क्या मतलब है? क्या ये तीनों साथी युवा बुद्धिजीवी नहीं हैं जो आपके साथ ग्रामीण इलाकों में आए थे? इसका मुझसे क्या संबंध है? मेरा परिवार कई पीढ़ियों से यहाँ का निवासी है और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इस स्थान को नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ कोई भी शहर में नहीं पढ़ा, मैं एक भी शब्द नहीं पढ़ सकता। आप ये तो नहीं कहेंगे कि इन तीनों का मुझसे कोई संबंध है ना? या मुझे न्याय के लिए कैप्टन के पास जाना चाहिए? मेरे ये कौन से स्वार्थ हैं? कैफेटेरिया में मौजूद अन्य कर्मचारी हंसने लगे। उन्होंने ऐसे बहुत से युवा लोगों को देखा है और वे हर साल ऐसे युवाओं का एक समूह भेजेंगे। यहाँ तक कि कैप्टन भी कैफेटेरिया में ऐसी चीजों पर आंखें मूंद लेते थे। वे सिर्फ एक मैच हैं। क्रोधित युवक अपना लंच बॉक्स लेकर बाहर चला गया। ठीक है, मुझे कप्तान को ढूंढने दो और मैं कप्तान को ढूंढने जाऊंगा। मैं ऐसी जगहों पर विश्वास नहीं करता जहां कोई कारण ना हो। 20 मिनट बाद वह युवक सिर झुकाए और निराश होकर वापस आया। जब दूसरों ने उसकी अभिव्यक्ति देखी तो उन्हें पता चल गया कि उसे जोउ झेंगान द्वारा डांटा जा रहा है। बेशक जोउ झेंगान को उसे डांटना पड़ा क्योंकि रसोई में रसोईया उनके भोजन रसद का मुख्य आधार था। यहां तक कि उसने उस युवक को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की जो उसके सभी अधीनस्थों को तुरंत अपमानित करना चाहता था। आप वास्तव में अपनी सीमाओं को नहीं जानते। कड़ी आलोचना के बाद युवक को इतनी बुरी तरह डांटा गया कि वह आज्ञाकारी होकर वापस आ गया। जब बहुत से लोग परेशान थे तो जोउ झेंगान ने न केवल इन लोगों को डांटा बल्कि खुद भी अपना खाना मंगवाया और जिया जेड के सामने बैठ गया। जोउ झेंगान टीम लीडर हैं और उनके लिए विशेष भोजन की व्यवस्था है तथा अंदर उनकी देखभाल भी की जाती है। वह ऐसी चीजें खा सकता है जो अन्य लोग नहीं खा सकते। उदाहरण के लिए अन्य लोगों के स्टीम्ड बन प्रति व्यक्ति केवल 3 होते हैं लेकिन उनके स्टीम्ड बन असीमित हैं। न केवल वह बल्कि वर्दी पहनने वाला कोई भी व्यक्ति स्टीम्ड बंस की असीमित आपूर्ति का आनंद ले सकता है। जब तक आप इसे बर्बाद नहीं करते तब तक आप इसे खाते रहेंगे और आपका पेट भरा रहेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैप्टन जोउ झेंगान को प्रत्येक भोजन के लिए 2 औंस मांस भत्ता मिलता है। ये वरिष्ठों द्वारा निर्धारित एक विशेष भोजन है। यह न केवल उनके फार्म पर बल्कि अन्य फॉर्मों पर भी उपलब्ध है। विशेष इकाइयों से संबंधित सभी कार्मिक इस सब्सिडी को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आमतौर पर उन्हें अधिक प्रशिक्षण और भारी कार्य मिलता है इसलिए उन्हें दूसरों की तुलना में सब्सिडी मिलनी चाहिए। इस समय जोउ झेंगान के लंच बॉक्स में एक बड़ा चम्मच ब्रेस्ड पोर्क था। क्या मैंने यह नहीं देखा कि मेरे आसपास के सभी लोग ईर्ष्यालु थे। हालांकि जोउ झेंगान ने अपना लंच बॉक्स जिया जेड के साथ बदल दिया। जोउ झेंगान इस भोजन का तब से इंतजार कर रहा था जब से उसने कैफेटेरिया में खाने के बारे में सुना था। दोपहर के समय जल्दी में होने के कारण उसे जिया जेड के साथ खाने का मौका नहीं मिला। नतीजतन उसे दोपहर में कठोर हड्डियां चबानी पड़ी जिनका कोई स्वाद नहीं था। उसके मुंह में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था और वह अब इसे दोबारा आजमाना नहीं चाहता था। इस घोर पक्षपात से सभी लोग क्रोधित हो गए। जिया जी ने चारों ओर देखा। खैर अब वह सभी शिक्षित युवाओं की आंखों की किरकिरी बन गई है। हमें अभी भी कम प्रोफाइल रखना होगा। जिया जी ने जल्दी से लंच बॉक्स वापस बदल दिया। मैंने तो खाना शुरू कर दिया है अब मैं तुम्हें अपना बचा हुआ खाना कैसे खाने दूं। परिणाम स्वरूप ये सुनने के बाद जोउ झेंगान ने गंभीरता से सिर हिलाया और बिना एक शब्द कहे उसने चॉपस्टिक का उपयोग करके ब्रेस्ड पोर्क का आधा हिस्सा जिया जेड के लंच बॉक्स में डाल दिया। हम एक दूसरे के लिए कौन हैं? तुम मेरी बहन हो और तुम्हारा भाई मेरा साथी है इसलिए तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। ग्रीष्म संक्रांति के कारण मेरे मुंह में रखा खाना लगभग थूकने पर मजबूर हो गया। हालांकि वह जानता था कि जोउ झेंगान ये सब उसके भले के लिए कर रहा था और जानबूझकर उसके लिए बाघ की खाल छिपाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह दूसरों की शक्ति का लाभ उठा सके। लेकिन जोउ झेंगान के गंभीर झूठ ने उसके लिए यकीन करना मुश्किल कर दिया। यह उस जोउ झेंगान से बिल्कुल अलग था जिसने अभी अभी लोगों को कठोरता से और गंभीरता से डांटा था। ट्रेन में जोउ झेंगान एक सौम्य उत्साही और दयालु सज्जन व्यक्ति हैं। इस दौरान जोउ झेंगान एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जो अंतिम निर्णय लेता है। अब वह जोउ झेंगान बन गया है जो हर बार मुंह खोलते ही झूठ बोलता है। ग्रीष्म संक्रांति के समय जोउ झेंगान के बारे में मेरी समझ बार बार ताजा होती रही। जिया जी को लगा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछले जन्म में उसकी नजर कमजोर थी और उसे एक बदमाश से प्यार हो गया। उसकी नजर वाकई बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन ब्रेस्ड पोर्क तो लंच बॉक्स में पहले से ही था और वह उसे वापस नहीं करना चाहती थी। अब से उसे कड़ी मेहनत वाली जिंदगी शुरू करनी होगी इसलिए अभी मीटना भी भरवाए तो कोई बात नहीं। जिया जी को बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई भले ही जोउ झेंगान ने उसकी इतनी अच्छी देखभाल की हो। वैसे भी जब तक वह छिपे हुए नियमों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता बाकी सब कुछ आसानी से निपटा जा सकता है। अगर वह छिपे हुए नियमों का इस्तेमाल करना चाहता है तो वह सीधे जोउ झेंगान को टीम लीडर के पद से हटा सकती है। हमारे दोबारा जन्म लेने की शक्ति को कम मत आंकिए। यदि आप पुनर्जन्म लेने का साहस करते हैं तो आपको अपना फायदा उठाए जाने का डर नहीं रहेगा। ये कहने के बाद जोउ झेंगान ने जिया जी की तरफ देखा तक नहीं। वह अपने लंच बॉक्स को गौर से देखता रहा और उसे बड़े चाव से खा गया। यहां तक कि जिया जी को भी संदेह था कि जो अलिखित नियम वह समझता था वे उसका अपना भ्रम थे। जोउ झेंगान मुझे कैसे पसंद कर सकता है? जिस तरह से वह ब्रेस्ड पोर्क को देखता है उसे देखिए वह आपको देखने के तरीके से कहीं अधिक अंतरंग लगता है। वे तीनों डगआउट में लौट आए। लियु कियानजिन केवल पूरा खाना खाकर ही खुश थी और किसी और चीज के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। मैं वापस आकर बिना किसी शिकायत के सो गया। जिया जी और लियु जियान ने तेल के लैंप बुझा दिए। अंधेरे में लियु जियान डर के मारे जिया जी की ओर झुक गया। जिया जी क्या हम अलग थलग हैं? ये स्पष्ट था कि जब वे भोजन कर रहे थे तो शिक्षित युवा उनसे बहुत दूर थे और किसी ने भी उनका अभिवादन नहीं किया। लियु ज़ियान के साथ पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया था, लेकिन आज वास्तव में उसके साथ अलग थलग व्यवहार किया गया। ये लियु ज़ियान के काम करने के तरीके के बिल्कुल विपरीत है। यह अपरिहार्य है, आज जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे अलग रहना होगा, लेकिन कल से चीजें धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी। जिंदगी में हम हमेशा दूसरों के विचारों पर ध्यान नहीं दे पाते। जिंदगी इस तरह बहुत थकाऊ होती है और मैं इस तरह जीना नहीं चाहता। यदि आपको लगता है कि मेरे साथ रहने से आपके साथ समझौता हो रहा है तो आप कल ही यहाँ से चले जा सकते हैं। ज़ियाज़ी सच बोल रही थी। पिछले जन्म में उसे इस या उस व्यक्ति को नाराज करने के डर से समझौता करना पड़ा था। उसे सतर्क और दुखी दिखते हुए हर किसी की चापलूसी और खुशामद करनी पड़ती है, लेकिन अंत में उसके पास बहुत से सच्चे दोस्त नहीं थे और वह बुरी स्थिति में फंस गया। वह अपने जीवन से समझौता कर चुकी है तो फिर दूसरों के लिए खुद को विनम्र क्यों बनाए? अगर वे दोस्त बन सकते हैं तो दोस्त ही रहेंगे, अगर वे दोस्त नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं। खैर, वह दूसरों का फायदा नहीं उठाएगी और दूसरे उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। जब लियु ज़ियान ने यह सुना तो वह लगभग उछल पड़ी। तुम मुझे ऐसे ही देखते हो, मैं हमेशा से यही सोचता था कि हम दोस्त हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बिल्कुल भी दोस्त नहीं समझोगे। अगर मैं ऐसी किसी घटना का सामना करने के बाद अकेले भाग जाऊं तो क्या तब भी मुझे दोस्त माना जाएगा? आप किस बात से उत्साहित हैं? इसका हमारी दोस्ती से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बात पर तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, दोस्त तो दोस्त ही होते हैं। मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगा जो तुम करना चाहते हो। मैं आपकी पसंद का सम्मान करता हूँ। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस जीवन में लियु ज़ियान की दोस्त बन जाएगी। हम क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ? ज़ियाज़ी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उसकी आवाज़ धीरे धीरे धीमी हो गई थी। क्या आप थके नहीं हैं? मैं पूरे दिन यात्रा करने के बाद थक गया हूँ। महत्वपूर्ण मुद्दों से बचे नहीं। अगर तुम नहीं सोओगे तो मैं सो जाऊंगा। तुम ऐसे क्यों हो? लियु ज़ियान की एकमात्र प्रतिक्रिया ज़ियाज़ी के लगातार खर्राटे थे। लियु ज़ियान ने गुस्से से आह भरी और उसे मानना पड़ा कि ज़ियाज़ी के साथ वो बहुत सुरक्षित महसूस करती है। ज़ियाज़ी के करीब आने के बाद उसे अब रात में चूहों की चिंता नहीं रहती। उसने दूर जाने से इनकार कर दिया और ज़ियाज़ी के साथ ही रहने लगी। उस रात कुछ नहीं हुआ और अगले दिन ग्रीष्म संक्रांति पर मैं बहुत जल्दी जाग गया। मेरी जैविक घड़ी, जो वर्षों से विकसित हुई थी, मुझे जल्दी जगा देती थी। कमरा पहले से ही थोड़ा ठंडा था। शायद कल रात मिट्टी के चूल्हे में डाली गई लकड़ियां बुझ गई होंगी। कोई रास्ता नहीं है। आग में कुछ निरंतर गुण जोड़ने के लिए कोयले की टिकियां या ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैंने रजाई उठाई, मुझे कमरे में ठंडक महसूस हुई, लेकिन यह बाहर से बेहतर है। छोटी खिड़की से बाहर देखने पर अभी भी अंधेरा था। यहाँ तो 9 या 10 बजे तक उजाला नहीं होता। ग्रीष्म संक्रांति के लिए कोई घड़ी नहीं है। अपने बगल में ज़ियाज़ी की हलचल सुनकर लियु ज़ियान ने चकित होकर अपनी आंखें खोली और पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? अभी तो दिन भी नहीं निकला है, शायद देर हो चुकी है। यहाँ तो 9 या 10 बजे से पहले उजाला नहीं होता। ज़ियाज़ी ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, यहाँ लोग देर से उठते हैं लेकिन देर से सोते भी हैं। यहाँ के लोगों का काम और आराम का कार्यक्रम अंतर्देशीय शहरों के लोगों के कार्यक्रम से बिल्कुल अलग है। ये सुनने के बाद लियु ज़ियान ने अपनी कलाई को पलटने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना था कि वह समय नहीं देख सकी। सौभाग्य से ज़ियाज़ी ने तेल का दीपक जलाया और जब उसने घड़ी देखी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। हे भगवान, 8 बज चुके हैं। ज़ियाज़ी मुस्कुराया, जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उसने अपने कपड़े पहने, अंदर से कुंडी खोली, दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर निकल गया। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी। ज़ियाज़ी कांप उठी। यहाँ का तापमान 0 से 10 डिग्री से भी ज्यादा नीचे गिर गया था। अनुमान है कि कुछ ही देर में तापमान 0 से 30 या 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाएगा। दरवाजे के चारों ओर एक साधारण दौड़ के बाद मैं पहले से ही दूरी पर उगते सूरज के चमकीले रंगों को देख सकता था। मैं ग्रीष्म संक्रांति के दौरान दूर तक दौड़ने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि यह खतरनाक है। सिर्फ इसलिए कि वह भेड़ियों से नहीं डरती, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे भेड़ियों के झुंड में भेज दिया जाएगा। जैसी कि उम्मीद थी, जैसे ही वह डगआउट के प्रवेश द्वार पर लौटी, उसने झो झेंगोन, जियांग इफान और अन्य अपरिचित लोगों को भूरे रंग की वर्दी में अपने डगआउट में आते देखा। जब झो झेंगोन ने ज़ियाज़ी को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था, लेकिन कुछ नहीं कहा गया। सभी लोग इकट्ठा हो जाएं, सभी शिक्षित युवा अब हाजिरी के लिए बाहर आ जाएं। जियांग इफान अपने आदमियों को डगआउट की कई पंक्तियों तक ले गया और 2 बार चिल्लाया। कई लोग अचंभित होकर अपने डगआउट से बाहर निकले। उनकी आंखों के कोनों से बलगम लटक रहा था और बाल बिखरे हुए थे। ये किस लिए है? बहुत ठंड है और करने को कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मुझे सोने नहीं दे रहे हैं।
अभी तो भोर ही हुई है, बाहर बहुत ठंड है और करने को कुछ भी नहीं है।
हम सो क्यों नहीं सकते?
ये बहुत बदमाशी है।
कई लोगों ने शिकायत की कि उन्होंने ऐसा निर्दयी और हृदयहीन व्यक्ति कभी नहीं देखा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बहुत क्रूर है।
इन शिक्षित युवाओं ने लगभग 4 दिन और 4 रात तक रेलगाड़ी और घोड़ागाड़ी में यात्रा की।
मैंने सोचा था कि आज मैं अच्छी नींद ले पाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर से जल्दी उठ जाऊंगा।
स्वाभाविक रूप से सभी लोग काफी असंतुष्ट थे। कल रात कई लोगों को ठीक से नींद नहीं आई। कमरा न सिर्फ ठंडा था बल्कि चूहे भी बहुत थे, इसलिए कई लोग सुबह तक बिस्तर पर नहीं गए।
ठीक है, आप सब इतने बातूनी क्यों हैं? आप यहाँ सीमा निर्माण का समर्थन करने आए हैं, देवियों और सज्जनों बनने नहीं।
ये देखते हुए कि कल आपको सड़क पर काफी परेशानी हुई थी, हमने आज आपको जगाने में जानबूझकर 2 घंटे की देरी की है।
सामान्य परिस्थितियों में हमारे बटालियन मुख्यालय में सभी लोग 7 बजे से ही प्रशिक्षण शुरू कर देते।
जो आपके पास है उसके लिए कृतघ्न मत बनिए।
क्या आपको लगता है कि हम जानबूझकर आपके लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं?
हमारे पास इसके लिए समय नहीं है।
आपको अपना नाम गिनने के लिए बुलाया जाता है और फिर आप भोजन और अपनी साधारण दैनिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए पंक्ति में खड़े हो जाते हैं।
क्या आप जीने के लिए तैयार नहीं हैं?
आज से कैफेटेरिया में आपको खाना नहीं मिलेगा।
अगर आप में से किसी को लगता है कि हम आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, तो आप आकर खाना न लेने या फिर पंजीकरण कराने का विकल्प चुन सकते हैं।
ऐसा इसलिए होता है कि हम भोजन बचा पाते हैं।
जियांग यिफान पहले से ही गुस्से में था।
ये छोटे कमीने अब भी बगावत कैसे कर सकते हैं?
आलोचनाओं की इस बौछार के बाद ये लोग सचमुच हताश हो गए।
वे सिर झुकाए एक साथ खड़े रहे और कुछ नहीं बोले।
झू झेंगान ने फिर नाम गिनना शुरू किया और जल्द ही उसके पास सभी नाम थे।
केवल 8 महिला समलैंगिक और 22 पुरुष समलैंगिक थे।
कुल 30 लोग हैं। उनमें से प्रत्येक को उनके नाम वाला एक टिकट दिया गया और इस पर आधिकारिक मुहर भी लगी हुई है।
टिकट के साथ वे कैंटीन में जाकर भोजन तथा बर्तन, कड़ाही और अन्य सामान ले सकते थे।
झू झेंगान ने उन्हें यह भी स्पष्ट रूप से बताया कि चूंकि वे अभी अभी आए हैं, इसलिए उन्हें 3 दिन आराम करने की अनुमति दी जाएगी।
3 दिन बाद उन्हें बांध और सड़क की मरम्मत के काम में भी शामिल होना पड़ा।
यहाँ सर्दी जैसी कोई चीज नहीं है।
जमीन चाहे कितनी भी जमी हो, वे आसमान, धरती और प्रकृति से लड़ेंगे।
ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे न करें।
ये सुनकर सभी लोग पूरी तरह से निराश हो गए।
जिया जी ने टिकट अपने हाथ में लिया और लियू जियान और लियू कियान जिनके साथ भोजन लेने के लिए झू झेंगान का पीछा किया।
बैठक के बाद अन्य शिक्षित युवा सीधे अपने अपने डगआउट में चले गए।
जाहिर है उनके लिए किसी चीज को जानना और उसे तुरंत करना 2 अलग अलग अवधारणाएं हैं।
उनमें से कुछ ने झपकी ले ली, जबकि अन्य ने अपना चेहरा धोना और दांत ब्रश करना शुरू कर दिया।
झू झेंगान ने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी, मुड़ा और जियाजी की नजरों से मिला।
उसने फिर पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ 3 लोग थे।
उसके चेहरे पर बेबसी के भाव उभर आए।
इन लोगों को शिक्षित युवा कहा जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका स्वभाव कुछ खराब होता है।
हर बार जब वे आते हैं तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है।
ये तो बस शुरुआत है।
जब मैंने जियाजी को देखा तो मुझे अचानक याद आया कि अभी क्या हुआ था, और निश्चित रूप से मुझे याद आया कि मुझे अभी भी जिया जेड के साथ चर्चा करने के लिए कुछ चीजें थी।
भोजन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन हमने अपनी भोजन समस्या का समाधान नहीं किया है।
आज सुबह कैफेटेरिया में खाए गए बेस्वाद भोजन के बारे में सोचकर ही उसे लगा कि वह इस तरह नहीं रह सकता।
कॉमरेड जियाजी, 1 मिनट के लिए इधर आइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ।
लियू कियानजिन और लियू जियान को जियाजी को डांटते हुए सुनना बुरा होगा, इसलिए उसे बाहरी लोगों के सामने जियाजी को कुछ सम्मान देना पड़ा।
जियाजी ने पलकें झपकाईं।
झू झेंगान का स्वर थोड़ा असंतुष्ट लग रहा था।
क्या यह असंतोष आपके प्रति है?
जियाजी ने लियू जियान और लियू कियानजिन को देखकर मुस्कुराया और तेजी से आगे बढ़ गया।
जियांग यिफान ने तुरंत झू झेंगान को अपनी कोहनी से धक्का दिया।
उसने आंख मारी और मुस्कुराया।
ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं अपने पीछे वाले साथियों से संपर्क करूंगा।
झू झेंगान के साथ व्यापार करने आए कई अन्य साथी भी मुस्कुराते हुए जियांग यिफान के पीछे पीछे चले गए।
झू झेंगान का चेहरा अचानक लाल हो गया।
जियांग यिफान बाद में तुम्हें 5 किलोमीटर तक वजन के साथ दौड़ाकर सजा देगा।
क्या तुम बच्चे?
जियांग यिफान वहीं खड़ा रहा मानो उस पर बिजली गिर गई हो।
अविश्वास की दृष्टि, मुझे कैप्टन कहो,
झू झेंगान ने भौहें चढ़ाई और सख्ती से चिल्लाया।
जियांग यिफान तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ, विनम्रता से सलामी दी और कैप्टन पुकारा।
कैप्टन, कृपया मुझे परेशान करना बंद करें।
ठीक है, आज तेज हवा चल रही है और हवा उत्तर पश्चिमी है।
ठीक है, हवा चल रही है ना, तो खेल के मैदान में 100 चक्कर लगाओ।
देखो, मैं कप्तान अपने अधीनस्थों के प्रति कितना विचारशील हूँ। झू झेंगान ने कठोर चेहरा बनाकर पलट कर देखा। उसने अपने पीछे से आ रही जियांग यिफान की चीख पुकार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तुम सचमुच 10 चक्कर और मैं गलत था कैप्टन झू। झू झेंगन ने फिर मुड़कर जियाजी की ओर देखा जो उसके पीछे मुस्कुराते हुए आ रही थी और फुसफुसाया, तुम इतनी सुबह क्या कर रहे थे? मैं डगआउट के चारों ओर 2 बार दौड़ा। ऐसा दोबारा मत करना। झू झेंगोन की आवाज़ अचानक कठोर हो गई और जियाजी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। क्यों, मैं तो बस अपनी टांगे फैला रहा हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, सरकंडे के रास्ते पर अक्सर भेड़िए होते हैं। तुम अभी भी वहां हो, अकेले ही डगआउट में दौड़ रहे हो। क्या होगा अगर तुम किसी भेड़िए से टकरा गए? भेड़िए विशेष रूप से आप जैसे अकेले लोगों पर हमला करते हैं। अगर कोई सुबह जल्दी नहीं उठता और कुछ हो जाता है तो मदद करने वाला कोई नहीं होगा।